ओम शांति। आप सभी प्यार से एक बार बोलेंगे सभी ओम शांति। हमारा ये 3 दिवसीय मेडिटेशन रिट्रीट कम कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में मैं संस्था की ओर से साथ साथ हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की तरफ से भारत एवं भारत के मित्र देशों से पधारे आप सभी वैज्ञानिक अभियंताओं का और साथ ही हमारे अन्य अतिथियों का इस इनॉग्रल सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। निश्चित तौर पर आप सभी को देखकर आज मुझे बहुत ही हर्ष और आप सभी पर गर्व हो रहा है। आप कहेंगे क्यों, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मैं आप सब पर गर्व करूं? निश्चित जब आप यहां आ रहे होंगे तो आपने समाचार में न्यूज़पेपर में यही पढ़ा होगा कि माउंट आबू का टेम्परेचर कितना हो रहा है, 0 डिग्री। और मुझे पता है कि कुछ लोगों ने ये न्यूज पढ़ के अपने टिकट्स कैंसिल करा दिए और वो इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं लेने यहाँ पहुंचे। लेकिन आप इतने सारे परमात्मा प्यारे प्रभु प्रिय आत्माओं को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने आई, 0 डिग्री टेम्परेचर आपने सुना, उसके बावजूद आप सब यहाँ पर पहुंचे। और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, आज हमने सुबह भी देखा 4 बजे से ही सारे ही हमारे डेलीगेट्स सुबह 4 बजे से मेडिटेशन में भी आए, सुबह का सेशन भी अटेंड किया और अभी यहाँ पर इस सेशन के लिए भी पहुंच गए। तो आप सभी साधारण नहीं परंतु महान महान अभियंता और वैज्ञानिक और परमात्मा के विशेष लाडली संतान है, इसलिए आप सभी पर मुझे गर्व है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने लिए ताली बजाइए जोरदार। जिंदगी के सफर में हम सभी चल रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना दौड़ भाग करने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि चेहरों पर वो हंसी और वो खुशी नहीं है। कहीं न कहीं जिंदगी का कोई ऐसा पहलू है जिसे हम ठीक से शायद समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे पहचान नहीं पा रहे हैं। और हम सब ज्ञान सागर परमात्मा पिता के इस कंठे पर इसीलिए पहुंचे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ जो विभिन्न हमारी क्लासेस होंगी, जो सेशंस होंगे, उसके दौरान हम अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को रीडिस्कवर कर सके और जीवन की उस खुशियों को, उस आनंद को पुनः वापस प्राप्त कर सके। मैं एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के रूप में आप सभी से जरूर कहना चाहूंगी। मुझे किसी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई जो मैं आपको भी सुना रही हूँ। एक बार कुछ यात्री थे, यात्रा के दौरान वो एक बहुत बड़ी सुरंग से गुजर रहे थे। सुरंग बहुत अंधेरी थी वो गुफा, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और राहगीर जब उस सुरंग से गुजर रहे थे तो पैरों में कुछ कंकड़ चुभ रहे थे, तो कुछ ने तो उनको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, पैरों से ही हटाकर कदम आगे बढ़ाए। कुछ लोगों ने कहीं वो दूसरों को चुभ न जाए इस भावना से वो कंकड़ उठा लिए और अपनी जेब में रख लिए। सुरंग को पार करके जब बाहर आए वो और उन्होंने उन कंकड़ को देखा तो वो कंकड़ नहीं परंतु बहुत ही कीमती अमूल्य रत्न थे। तो जिन्होंने उसे इग्नोर किया, उठाया नहीं, वो तो पश्चाताप करते रहे, और जिन्होंने कम उठाया वो ये सोचकर पश्चाताप करते रहे कि काश कुछ और उठा लिए होते तो अच्छा होता। मैं इसलिए ये कहानी सुनाना चाह रही थी आपको कि आप सब भी अपने घर परिवार, अपने कार्य व्यवहार, सारी जिम्मेवारियों को छोड़कर परमात्मा घर में यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आपको ये सुरंग की तरह लगेगा क्योंकि यहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ की दिनचर्या के अनुसार चल रहे हैं, बाकी सारी बातों को, दुनिया को भूल चुके हैं। मुझे लगता है आपको ये भी याद नहीं होगा यहाँ आकर कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, शायद सब भूल गए होंगे। तो आप सभी यहाँ आए हैं और इस परमात्मा घर में इस कार्यक्रम के दौरान ऐसे अमूल्य रत्न और अमूल्य मोती आप सभी के आगे आपको बिखरे हुए मिलेंगे। और अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को बहुत गौर से ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से उन रत्नों से मोतियों से आपकी झोलियां भर जाएंगे। अन्यथा घर जाने के बाद कहीं ये आप ये न सोचें कि काश हमने कुछ मोती और उठा लिए होते तो कितना अच्छा होता। मैं चाहती हूँ ये पश्चाताप न हो बल्कि आपको लगे कि हम इतना भर कर आए हैं कि अब औरों को भी बांट सकते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम मुझे उम्मीद है कि आप पूरे उमंग उत्साह पूरे दिल व जान और पूरी लगन के साथ अटेंड करेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ अगर आपने ध्यान से और लगन से इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से अटेंड किया है तो निश्चित रूप से हम लाइफ को रीडिस्कवर कर लेंगे। और जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि हमारी भागती हुई जिंदगी और जब हम इसे डिस्कवर कर लेते हैं तो एक सुखद जिंदगी का अनुभव हम करने लगते हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पर वैज्ञानिक अभियंता जो आए हुए हमारे मेहमान हैं यहाँ से जब लौटेंगे तो एक खुशहाल जिंदगी लेकर लौटेंगे। क्या आप सभी ये सोचते हैं? जो कहते हैं कि निश्चित हम यहाँ से एक नई जिंदगी लेकर लौटेंगे वो थोड़ा हाथ उठाए। सभी लेकर जाएंगे तो आप सभी को एक नई यात्रा के लिए नई जिंदगी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ फिर से एक बार अपने लिए तालियां। माननीय भ्राता शंकरलाल तिवारी जी मैं आपका नाम लेते जा रही हूँ और अनुरोध है कि आप सभी मंच पर आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे इसे सुशोभित करेंगे। आदरणीय सरला दीदी जी परम श्रद्धेय आदरणीय निर्वेर भाई जी आदरणीय गोदावरी दीदी जी आदरणीय भ्राता जवाहरलाल मेहता जी माननीय बहन नीरू अब्रोल जी आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल जी आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी आदरणीय भ्राता भरत जी मुझे महसूस हो रहा है कि ठंडी तो है लेकिन अगर हमारे शॉल और जैकेट से हाथ बाहर आ जाए तो थोड़ी तालियों की आवाज आएगी और तालियां बजाएंगे तो निश्चित ठंडी भाग जाएगी और गर्मी आ जाएगी। हमारी आज की ये सभा एक विशेष और अनोखी सभा है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान होस्ट है और हम सब कौन है सभी गेस्ट है या उनके बच्चे हैं? हम सब उनके बच्चे बन गए। अब तो बच्चे बन गए ना, कल से आप सभी यहाँ आए हैं। तो आप सभी वो परमात्मा प्यारे और लाडले उनके दुलारे बच्चों का मैं अपने ही घर में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे मंच की शोभा हमारे माननीय अतिथिगण मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ एवं बैचेस के द्वारा आप सभी को सम्मानित करें, स्वागत करें और हम सभी जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप सभी नए वर्ष में नए उमंग, नए संकल्प और नए उत्साह के साथ परमात्मा पिता के घर में सो अपने घर में आए हैं, तो इसलिए आप सभी का पूरे उमंग और उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए गॉडलीवुड शांतिवन से बीके किम एक बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर हमारे बीच में आ रही है। झूम कर हम गा रहे हैं, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, तो हम सभी बीके किम का भी स्वागत करते हैं।
जैसे फूलों में है सुगंध, जैसे बादल में है पानी, दिखे नहीं दुनिया वालों को भगवद शक्ति सुहानी। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत का, मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान, झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत का। स्वागतम 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 स्वागतम। सुख शांति का चंदन लुटाए हम,
ध्यान पर आनंद का कुमकुम लगाए हम,
एकता सुख शांति का चंदन लुटाए हम, नम्रता की आरती है दीप है मुस्कान,
झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत का, झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत का।
Father, come, Father.
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी टीम का, बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ आप सभी का इस नई यात्रा पर झूमकर स्वागत किया। गीत और नृत्य के पश्चात अब अपनी वाणी के द्वारा सभी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भरत भाई को, जो हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट विंग माउंट आबू के कोऑर्डिनेटर हैं तथा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। आपको देखकर दो लाइनें जरूर मुझे याद आती हैं, मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते हैं, रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आप जिस कैंपस में रह रहे हैं, हमारा मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स चाहे ये शांतिवन, जो सुंदर सुंदर इमारतें जहाँ बड़े आनंद पूर्वक रह रहे, इनके निर्माता हमारे भरत भाई हैं, तो अपनी वाणी के द्वारा हम सभी का स्वागत करेंगे।
ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति। आज के इस उद्घाटन सत्र में सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा, जो सुप्रीम साइंटिस्ट भी है, सुप्रीम इंजीनियर भी है, जिसने सारी दुनिया की रचना की है, उसको याद करते हुए आज के इस सत्र के अध्यक्ष सरला दीदी जी, मुख्य अतिथि सिस्टर नीरू जी एवं हमारे आदरणीय भ्राता निर्वेश जी और मंचासीन सभी महानुभाव और आप सभी मेरे अलौकिक भाई और बहनें, आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस माउंट आबू की पावन धरती पर इस डायमंड हॉल में पधारे हैं और ऐसे विशेष टॉपिक पर चर्चा करने पधारे हैं कि जीवन की पुनः खोज। तो ये बड़ा सुंदर टॉपिक है, ऐसे टॉपिक में हमारे बीच में मुख्य अतिथि बहन नीरू जी जो दिल्ली से पधारे हैं, आपके नाम से ही वो खुशबू आती है, उसका अर्थ ही होता है नीरू जी का कि खुशबूदार। ऐसे नीरू जी जिसके सामने हर कोई निरुत्तर हो जाता है, आप ऐसे यहाँ पर डायमंड हॉल में पधारे और हमारे सामने आज विराजमान हैं, तो आप सबका आपका पहले सबकी तरफ से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से एवं साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की तरफ से बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। इसके बाद हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता निर्वेश जी, जैसा इनका नाम है ऐसी इनकी पर्सनालिटी है, इनको देख के ही जो हमारे आदिदेव ब्रह्मा जैसे उनके अंदर जो पर्सनालिटी थी वैसे ही हम सबको फील होता है। सारा ब्राह्मण परिवार इनको देखने के लिए, इनकी दृष्टि लेने के लिए उत्सुक रहता है। तो ऐसे पर्सनैलिटी वाले भ्राता निर्वेश जी, जिनके नाम से ही पता पड़ता है कि इनका किसी के साथ वैर नहीं है, हम कोई बात लेके जाते हैं तो उनकी बातें ऐसा सुन के लगता है कि उनकी स्टेज बहुत ऊंची है, उनके वाइब्रेशन से ही जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाती है। तो ऐसे हमारे भ्राता निर्वेश जी का आप सबकी तरफ से और साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की तरफ से बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय सरला दीदी जी, जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की चेयरपर्सन भी है, जैसे आप नाम सरला दीदी है वैसे आप सरल स्वभाव की है, इतनी बिजी होते हुए गुजरात का सारा कारोबार संभालते हुए इस साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग का भी कारोबार संभालते हुए हम सबके सामने आज अपने अनुभवी वक्तव्य देने के लिए हम सबके बीच में हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में गोदावरी बहन महाराष्ट्र से पधारी हुई है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहुत फेमस है, यहाँ महाराष्ट्र के लोग जो बैठे होंगे उनको पता होगा। तो गोदावरी एक दूसरा नाम है गंगा का, जैसे गंगा को पतित पावनी कहते हैं, महाराष्ट्र में गोदावरी को पतित पावनी कहते हैं। तो ऐसी गोदावरी बहन हमारे बीच में आके अपने ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के जल से हम सबको पावन बनाने के लिए हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में राकेश मित्तल जी, जो फाउंडर कबीर पीस मिशन के हैं, दिल्ली से, लखनऊ से आप पधारे हैं, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में विशेष जिसके लिए आप सभी उत्सुक होंगे, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी। जैसे दादी जानकी का नाम सुनते ही एक उमंग सा आ जाता है, ब्राह्मण परिवार के लिए, सारी दुनिया के लिए जैसे वो एक जान है। तो ऐसी हमारी दादी जानकी, वो भी हमारे बीच में पधारेंगी और अपने ज्ञान रत्नों से हम सबको भरपूर करेगी। तो दादी जी का तहे दिल से हम बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारी दादी हृदय मोहिनी जी, जो सारे दिलों के ऊपर राज करने वाली है, उनके सामने जाते ही हम सबका दिल खुश हो जाता है, खुशी में हम सरोवर हो जाते हैं। तो ऐसे दादी हृदय मोहिनी भी हमारे बीच में पधारेंगी, यह हम सबका सौभाग्य है कि दोनों दादियां हमारे बीच में पधारेंगी। इसलिए जोरदार तालियों से उनका पहले से स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय मोहिनी दीदी भी पहुंचेंगी, जो हमारी दादी प्रकाश मणि जी के साथ साथ बहुत समय से सेवाएं देती रही है, यज्ञ को संभाल रही है, और रूरल विंग की आप चेयरपर्सन भी है, वो भी हमारे बीच में पधारेगी। तो उनका भी हम बहुत दिल से, प्यार से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जवाहर मेहता, भारत भूषण जी भी बैठे हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विशेष एक शख्सियत बैठी हुई है, भ्राता मोहन सिंघल जी, जो हमारे इस साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के लीडर है। सारा जो कारोबार है, करता धरता है, वो मोहन भाई सिंघल है। इनके एक एक संकल्प साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, उनके जीवन के लिए सदा चलते रहते हैं। आप अनवरत सदा ही ऐसे बिजी रहते हैं कि उनकी ये आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इनकी ही संकल्पना है, और इस संकल्पना के तहत आप सबको यहाँ आने का भाग्य मिला और हमको भी यहाँ आप सबके सामने आने का मौका मिला। ऐसे मोहन भाई सिंघल, नाम तो उनका सिंघल है लेकिन इनके काम सिंघल नहीं है, बहुत काम करते हैं। ऐसे हमारी मोहन भाई सिंघल, इनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में आज के स्टेज कोऑर्डिनेटर माधुरी बहन, आप विशेष भिलाई से पहुंची है। जैसे इनका नाम है वैसे इनकी वाणी भी बहुत मधुर है। तो ऐसे माधुरी बहन का भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस के एम ऑब्जेक्ट के संबंध में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन की पुनः खोज, ऐसा टॉपिक क्यों रखा गया। पुनः खोज इसका अर्थ है कि पहले भी जीवन थी, वो कौन सी जीवन थी और आज कौन सी जीवन बन गई है। आज हम इतने बुद्धिशाली हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम उस जीवन को कहां भूल गए। आज मनुष्य का जीवन एक मशीन जैसा बन गया है। मनुष्यों ने मशीनरी का इनोवेशन किया, रिसर्च की, उसको बनाया, लेकिन आज मानव एक मशीन बन गया है, उसका जीवन एक मशीन बन गया है। उसके अपने लिए टाइम नहीं है, उसका जीवन जैसे खत्म हो चुका है। तो ऐसा जीवन कैसे बन गया, और ऐसा कौन सा जीवन है जिसकी हम खोज करना चाहते हैं। जैसे कल भी आप सबने सुना महानुभावन से कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य आज की दुनिया के हिसाब से रहता है, सुख और शांति। तो ये दोनों चीज कहां नजर आती है हमें? शांति कहीं भी नजर नहीं आती है, और सुख के लिए आदमी अंधी दौड़ भाग रहा है। फिर भी सुख आगे जा रहा है और मनुष्य पीछे जा रहा है। तो ये कैसा जीवन बन गया है। एक समय ऐसा था भारत में कि जहां पर मनुष्य देवता रूप में थे, उनका जीवन देवतामय था, जहां पर सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ भरपूर था। तो वो ऐसा जीवन, सुंदर जीवन कहां चला गया, और आज हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। तो उसका मुख्य एक कारण नजर आता है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो हम पवित्रता को तो भूल गए और सुख और शांति को ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जब तक जननी को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी बुद्धिशाली यहां बैठे हुए हैं, सब साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, तो ऐसी आप रिसर्च करिए, यहां जो नॉलेज मिल रही है उसकी गहराई में जाइए, तो जरूर आपको वो जीवन पुनः प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप सब इस खोज में जरूर सफल होंगे। ये 3 दिन का समय आपके लिए है, आप एक एक सेकंड इसका पूरा पूरा उपयोग करना, कहीं भी उसको मिस नहीं करना, कहीं भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक एक सेकंड की आपके लिए बहुत वैल्यू है। क्योंकि परमात्मा का कहना है कि एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात जो हम जीवन पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा वो जीवन मुक्ति स्टेज है, वो जरूर आप सभी यहाँ सीखेंगे और अपने जीवन में धारण करके यहाँ से जाएंगे, और सारी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि जाना है तो सिर्फ माउंट आबू जाना है, ऐसा संदेश सबको देंगे। ओम शांति। धन्यवाद।
हमारे आदरणीय भरत भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का वेलकम करने के लिए धन्यवाद, साथ ही आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, हम तालियों से भरत भाई का भी स्वागत करते हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय निर्वेर भाई जी हमारे बीच में हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूं कि आपका पुष्प गुच्छ के द्वारा वेलकम करें, और हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय भ्राता शंकरलाल तिवारी जी, अगर आप कहीं भी सभा में हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय भ्राता शंकरलाल तिवारी जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, हम सभी तालियों से आपका स्वागत करते हैं, और बहनों से अनुरोध करती हूं कि आपका भी पुष्प गुच्छ एवं बैच के द्वारा स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कॉन्फ्रेंस के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्पष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी को। मैं अपने बचपन से ही आपको देख रही हूं कि आप अथक होकर निरंतर कार्य करते रहते हैं। आपके लिए सिर्फ मैं ये दो चंद लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि सिर झुक जाए जहां वही मंदिर होता है, नदी मिले जहां वही समंदर होता है। सिर झुक जाए जहां वही मंदिर होता है, नदी मिले जहां वही समंदर होता है। जीवन के इस सफर में बहुत है गम दोस्तों, पर जो मुस्कुरा के जिए वही सिकंदर होता है, वही सिकंदर होता है। और सदा मुस्कुराते और सबको ऐसी प्रेरणा देने वाले हमारे मोहन सिंगल भाई जी।
ओम शांति, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और इस नए वर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। बहन जी ने अभी अभी जो कुछ बोला शायद उसमें बहुत बहुत ज्यादा अतिशयोक्तियां हैं। मंच पर विराजित हमारे सब मेहमान और हमारे वरिष्ठ भाई और बहनें, सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, जीवन तो हम सभी जीते हैं, लेकिन यहां पर ये कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है इसे जीवन की एक नई परिभाषा, नई तो नहीं कहेंगे, हम सभी बहुत समय से कुछ सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको कैसे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए उसके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुझे एक घटना याद आती है, पढ़ी थी मैंने बहुत पहले, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से लगती हुई। हम सभी जानते हैं कि वह मीडिया से काफी दूर रहते थे, पब्लिसिटी से अलग ही रहते थे। एक बार मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है, आप क्यों अलग थलग रहते हैं और हमारे सम्मुख कम आते हैं, जबकि और पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं वह तो और अधिक से अधिक आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको उदाहरण एक देना चाहता हूं इस संदर्भ में, ताजमहल का। ताजमहल होता है ऊपर से तो बहुत शोभनीक और सब कुछ होता है, लेकिन क्या उसकी नींव दिखाई देती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नींव तो नहीं दिखाई देती। ऐसे ही हम सभी के जीवन की भी बात है। उन्होंने कहा कि क्या नींव के बिना ताजमहल का अस्तित्व होता? उन्होंने कहा नहीं। बस यही बात है, उन्होंने कहा कि मैं उस नींव को मजबूत करना चाहता हूं भारत देश की। ऊपर से तो वो अपने आप ही बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन उस नींव के लिए मैं कार्यरत रहता हूं। आज के कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये बात लागू होती है। जीवन तो हमारा ऊपर से सब दिखाई देता है, इसकी तुलना आइसबर्ग से भी की जाती है। कुछ हिस्सा 1/10 दिखाई देता है, कुछ 9/10 अंदर रहता है, लेकिन अंदर वाला भाग ही, वो इंटरनल पर्सनैलिटी जो है, वो ही एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के फॉर्म में मैनिफेस्टेशन उसका होता है। तो यहां पर भी जीवन के बाहरी रूप से तो हम सब परिचित हैं, तन मन धन संबंध समय आदि जीवन का जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लाइफ के कई एस्पेक्ट कहे जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल आदि आदि कई एस्पेक्ट, लेकिन हम सब जानते हैं अधिकतर हमारा समय जो है जीवन के एक्सटर्नल एस्पेक्ट में ही, इन्हीं सब में ही अधिक व्यतीत होता है। और जो इसके नींव के अंदर है वो क्या चीज है, उसी का ही एक्सप्लोरेशन करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिससे कि हम जान सकें कि जीवन में जो सच्ची सुख, शांति, आनंद, प्रेम है वो हम कैसे हासिल कर सकें। अधिकतर व्यक्ति जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब व्यक्ति समझता है मैंने पैसा भी कमा लिया, फैमिली भी है, मकान मोटर आदि सब चीज है, लेकिन फिर भी जीवन में आंतरिक शांति शक्ति संबंधों में मधुरता जो होनी चाहिए उतनी नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन, डिप्रेशन, कई सारी चीजें वो अनुभव समय प्रति समय करता रहता है, लेकिन उसका कारण नहीं जानता। बहुत अपनी तरफ से सब कुछ करता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग। बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, नेट पर है, लाइब्रेरी में है, सब प्रकार से, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे नॉलेज में और कैसे विजडम में कन्वर्ट करें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वो हम नहीं कर पाते। हम सबकी स्थिति वही है महाभारत प्रसिद्ध दुर्योधन की, जो दुर्योधन कहता था कि भाई मैं जानता हूं सत्य क्या है, लेकिन उस पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं जानता हूं असत्य क्या है, गलत क्या है, लेकिन उसे छोड़ने की शक्ति का अभाव है मुझ में। क्या हम सबों की यही स्थिति नहीं है? हम सब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पैक पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान खतरनाक है, जानते हुए भी कमजोरियों के वशीभूत होकर स्मोकिंग कर लेते हैं, अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बचपन से पढ़ते आए कि क्रोध करना बहुत हानिकारक है, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है जिन हार्मोन्स के द्वारा मनुष्य की डिसीजन मेकिंग पावर प्रभावित होती है और सही समय पर वो सही निर्णय नहीं ले पाता। जानते हैं लेकिन कह भी देते हैं कि क्या करें, हम चाहते तो नहीं क्रोध करना, क्रोध आ जाता है। हम ये नहीं करना चाहते ये हो जाता है, ये करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते। बस इसी बात के लिए कि जो हमारी आंतरिक शक्ति का अभाव है हमारे अंदर, इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति, जो एम्पावरमेंट सेल्फ होनी चाहिए, वो एम्पावरमेंट के लिए विशेष यहां पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक तो किया गया है, और इसके लिए हमने विशेष आज सुबह आपने एक शिविर किया होगा, राजयोग शिविर आत्मा के ऊपर राजयोगिनी शीलू बहन जी ने कराया। तो ऐसे ऐसे प्रतिदिन चार दिन तक चार शिविर हैं, तो उसके अंदर ये कैसे हम इंटरनल एम्पावरमेंट करें, आंतरिक शक्ति उसको भरें, उसके लिए विशेष एक तो आपको बुलाया गया है, वो इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के कारण सुबह वो शिविर हैं और रोज शाम को ऐसे एम्पावर्ड वो हैं, जो इवनिंग शिविर के नाम से नहीं है, ऐसे सेशन हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल में अपना जीवन ऐसा बनाया। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी, उनकी जीवन कहानी, कैसे उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करके इतना जीवन की पुनः खोज करी और आज एक छोटा सा जो बीज उन्होंने लगाया था 1936 में, आज पांचों कॉन्टिनेंट में पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पर फोटो भी चार लगाए गए हैं, हमारी वरिष्ठ दादियां जिनका दो हुआ, राजयोगिनी दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहनी जी, और इस विंग की चेयरपर्सन सरला दीदी जी बैठे हुए हैं। ये तो निमित्त सिंबॉलिक कुछ तीन चार लगाए हैं, लेकिन हमारी दादी प्रकाशमणि जी जिनके की स्मृति में सामने प्रकाश स्तंभ बना हुआ है वो, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लिविंग एग्जाम्पल। हमारे यहाँ मध्य में एक और भ्राता निर्वैर जी बैठे हुए हैं, जैसा कि बताया गया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो तो आज नहीं है लेकिन साकार रूप में, लेकिन उनका साकार स्वरूप हमें आपके अंदर दृष्टिगोचर होता है और समय प्रति समय हमारे मार्गदर्शक बन करके वो हमारी पूरे यज्ञ को, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसके मार्ग प्रदर्शना करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं, ये कहना तो बड़ा आसान है क्षमा कर दो, दूसरे की गलती को भूल जाओ आदि आदि, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप देखने में बहुत कम लोगों में मिलता है, और जिनमें मिलता है बहुत रेयर, तो वन ऑफ द रेयर सोल आप भ्राता निर्वैर जी हैं, जो हमारे सबके लिए एक मार्गदर्शक हैं। तो इंटरनल एम्पावरमेंट की मैं बात कर रहा था, इवनिंग सेशन खास उसके लिए वो रखे गए हैं, मेडिटेशन के सेशन। साथ ही साथ एक यहाँ पर ये बताया गया, बचपन से ही हम सब लोगों को बताया गया है कि कोई भी बात होती है हम लोगों के अंदर ये सबके संस्कार हो गया है कि गलती जो है ना भाई, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, प्रॉब्लम इज विद अदर्स। जो एक एनालिसिस करके वेरियस कोर्सेज हैं उनमें बताया जाता है कि आई एम ओके, अदर वन इज नॉट ओके, लाइक दैट, ऐसा। लेकिन मुख्य बात क्या है, ये झांकना, अंदर देखना। मुझे इस संदर्भ में एक याद आता है गालिब की एक बात दो दिन की, जो कि जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे बाहर का। इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, हम अपने अंदर नहीं झांकते, वेयर आई एम रॉन्ग उसको करेक्ट करने की बजाय दूसरे की तरफ जब देखते हैं, और यही सब समस्याओं का कारण है। तो सबसे बड़ी बात यहां आज आपको सुबह के सेशन में भी बताया गया होगा, कैसे अपने अंदर झांक करके देखें कि वेयर आई स्टैंड। तो एक इसका लक्ष्य ये है कि ये इन्फॉर्मेशन को कैसे हम नॉलेज और विजडम में कन्वर्ट करें, और इसके लिए ये सेशंस हैं। साथ ही साथ लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, हमारा अधिकतर समय इंजीनियर साइंटिस्ट या कोई भी प्रोफेशन वालों का अपने प्रोफेशन में जाता है, सुबह से ही लेकर के रात को लेट नाइट तक प्रोफेशन में रहते हैं। इसलिए कैसे हम वर्क लाइफ का बैलेंस रख सकें, उसका पैनल डिस्कशन रखा गया है, कई क्षेत्रों के अनुभवी यहां पर महानुभाव उसमें भाग लेंगे, कहने के लिए कुछ लेंगे लेकिन आप सभी भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कैसे वर्क लाइफ का बैलेंस रख के हम चल सकते हैं, वो उसके अंदर विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज नहीं तो होता क्या, या तो हम वर्क की तरफ बहुत ज्यादा डिवोट हो जाते हैं या लाइफ, अपने फैमिली लाइफ या अदर की तरफ। आवश्यकता यह है दोनों का बैलेंस रख के चलने की। गीता में भी जो अंतिम महावाक्य है, 18वें श्लोक का भी जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर मा, यहां कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां अर्जुन धनुर्धारी है, वहीं पर जीवन की सब चीज है, सुख शांति धन दौलत सोशल जस्टिस विक्ट्री पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। अब इसका भाव यही है, कोई कृष्ण और अर्जुन अलग, इस समय हम ही श्री कृष्ण हम ही अर्जुन है। वी आर मैन ऑफ एक्शन तो हो गए, हम अर्जुन हो गए, सुबह से रात तक काम में बिजी रहते हैं, लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द विजन ऑफ लाइफ, व्हाट इज द रियल विजन श्री कृष्ण बनने की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को केवल गाइड किया था, युद्ध नहीं किया लेकिन गाइड किया था, युद्ध में उनका रथ चलाया और इस कारण से विजयी हुए। तो आज हम भी यहां पर आए हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया है आप सबको भी जीवन की एक विजन मिले। एक्शन तो मैन ऑफ एक्शन तो है, लेकिन वो विजन लेकर के आप जब यहां से जाएंगे तो उस विजन और एक्शन का प्रॉपर बैलेंस रख के चल सकेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ जीवन इसके वर्कशॉप के लिए, ये यहां वन वे ट्रैफिक ही न रहे, पूरा टू वे ट्रैफिक रहे आपकी तरफ से। आप, मैं जानता हूं बहुतों के, मैंने यहां पर जो पधारे हुए हैं लगभग 3,500 से ज्यादा डेलीगेट्स कल तक आ चुके थे, और मैंने उनके बायोडेटा वगैरह देखे, बहुत अधिक ऐसे हैं जो मंच पर विराजित महानुभावों से भी उच्च श्रेणी के हैं, एजुकेशन में एक्सपीरियंस में, लेकिन कुछ लिमिटेशन होने के कारण सबको तो मंच पर समय नहीं दिया जा सकता, इसलिए 5 वर्कशॉप भी अलग अलग रखे हैं, जिसमें कि जीवन के ट्रेजर्स वो डिस्कस किए जाएंगे, ट्रेजर ऑफ टाइम, ट्रेजर ऑफ हेल्थ, ट्रेजर ऑफ पॉजिटिविटी आदि आदि, जिसमें आप सब भी उसमें एक्टिवली और पार्टिसिपेट कर सकें, अपने अनुभवों को शेयर कर सकें। ये जीवन के बहुत आवश्यक अंग हैं और इस कारण से इसको भी एक विशेष स्थान दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो ये इवनिंग सेशन के बाद जो वैलेडिक्ट्री सेशन है, उसके अंदर एक एक्शन प्लान भी प्रस्तुत किया जाएगा। जो कुछ है सुनेंगे तो सही हम, लेकिन सुनने के साथ साथ क्या हम एक्शन प्लान लेकर के जाएं, जो एक्शन प्लान को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, इसी उद्देश्य से अंतिम दिन एक ये रखा गया है वैलिडिटी सेशन के अंदर। और उसमें आपका परिचय उनसे भी एक होगा। एक भाई हैं भ्राता राम प्रकाश जी, हम सब ने 9/11 की घटना तो सुनी हुई है जीवन में, अमेरिका में ट्विन टावर्स की घटना, बहुत कुछ उसके बारे में डिस्कस हुआ, लेकिन वो एक लिविंग एग्जाम्पल है उस वक्त कैसे शायद 68th फ्लोर पर थे। और यहाँ का मेडिटेशन के द्वारा मेन थिंग ये है कि राइट टाइम पर राइट टचिंग हो। और जब चारों तरफ हलचल मरी थी, प्लेन क्रैश हुआ ट्विन टावर से, चारों तरफ बिजली चली गई और हलचल हुई, सब ने कहा खाली ये करो मेज के नीचे छिप जाओ आदि आदि जितना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है। लेकिन वो कुछ मिनट मेडिटेशन में बैठ करके वो अपना अनुभव खुद शेयर करेंगे उसमें और किस प्रकार से उन्हें टचिंग हुई। एंड ही वॉज वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट सोल, अपने साथ वो ऊपर से आए और ऊपर से नीचे पूरे इतने मंजिल तक सीढ़ी उतरते हुए उनके साथ पूरा ग्रुप समूह बच गया। और जैसे ही वो पूरा ग्रुप लगभग 60-70 का वो बाहर आए ट्विन टावर से, नीचे से जरा सा दूर गए, दोनों वो ढह गए। और राइट टाइम पर ये ही भारत का प्राचीन योग है, किस प्रकार से हम योग के द्वारा अपना कम्युनिकेशन सुप्रीम के साथ अगर रख सकते हैं तो वो शक्ति का सागर हमें समय पर शक्ति, समय पर निर्णय करने का वो देता है और हम कोई भी डिजास्टर से पार होने की क्षमता रख सकते हैं। ये बात का वो प्रैक्टिकल में शेयर भी करेंगे और उसको एक लॉन्च भी करेंगे, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस की जीवन में किस प्रकार से ये एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सके। मैं आपका और अधिक समय नहीं दूंगा। और यहां पर आने का एक सब लक्ष्य यही है जो गीता में भी अल्टीमेट योगियों का बताया है कि हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ ये जीवन में आएंगे, उतार चढ़ाव ये नियम है प्रकृति का, संसार का नियम है, लेकिन हर सिचुएशन में वी कैन मेंटेन द पीस ऑफ माइंड और ट्रैंक्विलिटी, वो उसका हम रख सके हैं कैसे, वो इसका कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है। और इन चार लाइन के साथ मैं इसमें समाप्त करूंगा इसी बात को, हर एक चाहता है, यहां भी बहनों ने फूल दिलवाए, आदर किया, सत्कार किया, यहां मंच पर बैठे भाई बहनों का, हर एक को फूल प्रिय होता है, स्नेह का प्रतीक होता है, आदर का सम्मान का प्रतीक होता है। तो शायर ने भी अपने रीति से उसे कहा है कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब का। निश्चित रूप से हम सभी इतने दूर दूर प्रांतों से यहाँ पर आए ही हैं वो मुस्कुराने की कला सीखने के लिए। आप सभी इसलिए आए हैं, किस लिए आए आप सभी? वो मुस्कुराने की कला सीखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, सारे सेमिनार्स रहेंगे, मैं मोहन सिंगल भाई साहब को आप सबकी तरफ से विश्वास दिला रही हूँ कि हमारे सभी जितने भी वैज्ञानिक अभियंता उनके परिवार आए हुए हैं, निश्चित रूप से वो सारे ही कार्यक्रम को बहुत सिंसियरली अटेंड करेंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो एक बिग स्माइल के साथ जाएंगे। तो क्या मैं आप सभी की तरफ से विश्वास दिला सकती हूँ? तो हाथ उठाए सभी जो कहते कि हाँ हम ऐसे पूरा अटेंड करेंगे और बिग स्माइल के साथ यहाँ से जाएंगे। किसी ने कहा है कि आंखों को हवा जरा सी लगने दो, आंखों को हवा जरा सी लगने दो, तन को धूप से थोड़ा सिकने दो, उलझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कैसे जिंदगी को, उलझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कैसे जिंदगी को, बिखरेंगे नहीं तो निखारेंगे कैसे अपनी हस्ती को। हम सब अपनी हस्ती को निखारने के लिए यहाँ आए हैं। आज हम वर्तमान में देख रहे कि चारों तरफ जिंदगी में बिखराव ही बिखराव, टेंशन ही टेंशन और उलझने ही है, किंतु जिंदगी अगर रोने के 100 कारण देती है तो मुस्कुराने के 1000 मौके भी देती है। अगर जिंदगी रोने के 100 कारण देती है तो मुस्कुराने के 1000 मौके भी देती है, सिर्फ आवश्यकता है उन मौकों को समझने की और उसका फायदा उठाने की। आज से हम अपनी जिंदगी के नए अर्थ ढूंढेंगे, अपनी उलझनों को सुलझाकर फिर से सुख शांति और आनंद से भरपूर जीवन की तलाश करेंगे और इसमें हमें मदद करेंगे आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय भ्राता राकेश मित्तल जी। आपने प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहकर देश के अनेक संस्थानों में महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आप एक उदारवादी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में समाज को निरंतर एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही आप लखनऊ में कबीर पीस मिशन के फाउंडर भी हैं। आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल जी,
ओम शांति। मंच पर विद्यमान सभी सम्मानित विभूतिगण, इस सभा में देश और विदेश से आए सभी सम्मानित मित्रों, अनेक मित्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आदरणीय मोहन भाई ने मुझे प्रारंभ से ही शामिल होने का मौका दिया। मोहन भाई हमारे बड़े भाई हैं और अक्सर लखनऊ आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की रजत जयंती इस वर्ष है और एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं जो वैज्ञानिकों की और इंजीनियर्स की जिंदगी में एक नया परिवर्तन लाए। मैं खुद भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूं और मैंने अनुभव किया है कि कैसे जीवन में अगर एक आध्यात्मिक मोड़ आ जाए, और जितना जल्दी आ जाए, जीवन का स्वरूप बदल जाता है। अक्सर जो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़े हुए होते हैं वो अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और होते भी हैं, लेकिन उसमें एक गलती ये होती है कि हम जो साइंस नहीं पढ़े हुए होते उनको बुद्धिमान नहीं मानते। मैं भी ऐसा ही था करीब करीब कि मैथमेटिक्स और साइंस ही सब कुछ है, लेकिन जीवन में एक समय आया कि जब ह्यूमैनिटीज, जीवन के जो अन्य विज्ञान हैं, उनको भी पढ़ने का मौका मिला और तब ये लगा कि जीवन में अगर समग्रता नहीं है, टोटेलिटी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो जीवन जीने का पूरा आनंद नहीं मिलता। आईएएस की परीक्षा में भी मुझे एक इतिहास विषय लेना पड़ा था, अब तो स्कीम बदल गई है, लेकिन उस समय वो करीब करीब जरूरी था। और जिस रूप में मैंने धर्म को देखा था बचपन में, आई बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन इन वेस्टर्न यूपी, तो मुझे बिल्कुल भी श्रद्धा धर्म में नहीं होती थी। मैं देखता था कि जिन लोगों को बहुत धार्मिक समझा जाता है उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यवहार में बहुत अधार्मिक हैं। पूजा करेंगे पर झूठ भी बोलेंगे, निंदा भी करेंगे। तो मैं कंफ्यूज पर्सनैलिटी के रूप में बड़ा हुआ और कभी मैंने ट्रेडिशनल रिलीजन में आस्था नहीं रखी। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने रुड़की से किया था वर्ष 70 में, और ये एक प्रकृति का संयोग था। मैंने पूरी रुड़की यूनिवर्सिटी को टॉप किया था, मैं प्रशंसा के लिए बात नहीं बता रहा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप किया था, सभी ब्रांचेस को और सभी सेमेस्टर्स में मैंने टॉप किया। रुड़की का मैं बेस्ट ऑलराउंडर होकर निकला, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला। उस समय कैंपस इंटरव्यू का जमाना नहीं था, वैसे भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन थोड़ा लो एप पर था। फिर भी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और परिस्थितिवश धीरे धीरे मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रवेश पाया। सौभाग्य से अच्छे संस्कार थे, जैसे सुबह शीलू बहन बता रही थी कैसे संस्कार हमको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, और एक ईमानदारी और मेहनत से काम करने की प्रवृत्ति थी और उसमें आनंद भी मिलता था। लेकिन शुरू में ही एक मित्र ने कहा, हमारे साथ के ही थे, नौजवान थे, वो वकील थे किसी इनकम टैक्स के, यहां तक मुझे याद है कि मित्तल साहब इतनी मेहनत और ईमानदारी से क्यों काम करते हो, बाद में पछताओगे। मैं स्तब्ध रह गया, कभी इस बारे में सोचा नहीं था, और मन में सोचा कि ये अच्छे होने से पछताने से अच्छा तो खराब क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये भी उत्तर नहीं था। और ये घटना करीब 1980 की है, जब मेरी आयु मात्र 30 वर्ष की थी। लेकिन इस उनके वाक्य ने मुझे घोर चिंतन के लिए प्रेरित किया। Why did he say so? What does it mean? What is life? Why should one be good? Is there any science of life? इन सब सवालों के साथ मुझे एक प्रेरणा हुई, एक जिज्ञासा हुई। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि वो यू विश यू गेट वॉट यू विश बट यू शुड विश एनफ। एक थ्रेश होल्ड होता है हमारी इच्छा शक्ति का, अगर उस थ्रेश होल्ड पर नहीं पहुंचेंगे तो बैक वापस हो जाएगी। जैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजा जाता है अगर वो एस्केप वेलोसिटी से कम होगा तो वापस ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएगा, स्पेस में नहीं जा पाएगा। तो उस इच्छा शक्ति को वो वेग देने की जरूरत है। और मैंने देखा कि मुझे तुरंत अच्छी पुस्तकों से, अच्छे व्यक्तियों से, अच्छी संस्थाओं से संपर्क हुआ, और मुझे लगा पहली बार कि धर्म तो विज्ञान है, लॉजिकल है, कुछ भी इसमें ये लॉजिकल बात नहीं है। और उसी क्रम में मैं इस महान संस्था के भी संपर्क में 80s में आया कानपुर में, और देखा कि कितना एक सुनियोजित, जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं, मैं भाई से पूछ रहा था कि शायद हिंदुस्तान में तो इससे बड़ा हॉल नहीं है, और वो खुद चीफ इंजीनियर हैं यहां के। और ये सब एक विचार से प्रारंभ हुआ, किसी ने सोचा होगा कि हम एक ऐसा हॉल बनाएं जिसमें कोई पिलर ना हो, आपने एक पिलर यहां पे नहीं देखा। और मैं जहां तक मेरी सूचना है 20,000 तो कुर्सियां लग जाती हैं और नीचे बैठे हैं तो 25,000 तक लोग यहां पर आ जाते हैं। तो मानव शक्ति इतनी है, लेकिन इसको जब हम अपने में सीमित कर लेते हैं तो ये सीमित हो जाती है, और जब इसको यूनिवर्सल कॉस्मिक फोर्सेस से जोड़ देते हैं तो ये असीमित हो जाती है। एक भाई ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, निजार जुमा, आपने से बहुत से लोगों मिले भी होंगे, नाम भी सुना होगा। वो लखनऊ आए थे 2 वर्ष पूर्व, केनिया में हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, द फ्यूचर ऑफ पावर। आज आप वर्ल्ड में उस तरह के इंडिकेशंस आज हम देखने लगे हैं। एटॉमिक पावर, मस्कुलर पावर, ये पावर नहीं है, ये वीकनेस है। आज वही कंट्री आगे पावरफुल माना जाएगा जिसके अंदर इनर पावर होगी, स्पिरिचुअल पावर होगी। और हिंदुस्तान में कितनी भी कमी हमें दिखाई दें, लेकिन आज भी बहुत इनहेरेंट स्पिरिचुअल पावर है, ये बात आप मान के चलिए। दो वर्ष पूर्व मैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, हमने दो नोबेल लॉरिएट वहां पर इनवाइट किए थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके ऑडिटोरियम में उनका टॉक कराया। और आज जब भी किसी कंट्री के प्रोग्रेस की बात होती है और खासतौर से इंडिया की, तो चाइना से अक्सर कंपैरिजन होता है, चाइना की प्रोग्रेस ये, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ये, और कोल कंजम्पशन ये, स्टील कंजम्पशन ये, और ये ग्रोथ रेट। तो उसके लेक्चर में बहुत बार इंडिया चाइना का रेफरेंस आया और हर पैरामीटर में चाइना करीब करीब आगे था भारत से। हम भी सुन रहे थे, यस फिजिकली इट इज ऑल राइट। बाद में जब हम लोग डिनर साथ ले रहे थे, मैंने पूछा उनसे साइलेंटली, सर इन ऑल योर पैरामीटर्स चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया, बट कैन यू थिंक ऑफ एनी पैरामीटर वेयर इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना? सोचने लगे, यस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक। और आफ्टर ए पॉज ऑफ से अबाउट 30 सेकेंड, ही सेड, आई थिंक इट इज हैप्पीनेस वेयर इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना। एंड सर व्हाट एल्स डू वी नीड? वी ऑल एग्जिस्ट फॉर हैप्पीनेस। ये सवाल अक्सर हम पूछते हैं, बहुत से कॉन्फ्रेंसेज में पूछते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट विच वी वांट टू गेन? इफ आई वांट टू ग्रो मटेरियली, फिजिकली, व्हाट डू, इफ आई नीड प्रमोशंस इन माय लाइफ, इफ वांट मोर मनी इन लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट? एंड एवरी वन कम्स टू देयर कंक्लूजन, आई थिंक इट इज हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी। नाउ इफ आई आस्क, All rich persons are happy. Answer is yes or no? No. All married persons are happy. Very big no. And all unmarried are unhappy. What I want to say is there is no set of external parameters which can ensure your happiness. And that makes us think, what is happiness? Happiness comes from outside or does it come from within? And what is that mechanism which makes me feel from within? And I think this is what rediscovery means. Hum log bachpan se चलते हैं। मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग एब्रिवेशन अक्सर लाइफ का देता हूं, इट हैज 4 अल्फाबेट्स, LIFE। चार आश्रम की भी बात हमारे यहां कही जाती है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। दे आर अकिन टू दीज 4 अल्फाबेट्स, LIFE। लर्निंग, हम लोग सब पढ़ते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं। Indulging, involving ourselves in this external life. But a point comes in everybody's life. Maybe in somebody's life it comes sooner, in somebody else's life it comes little later. A question mark comes, what for I am living? Is it this same routine that I heard you must have heard of Mr. Gurcharan Das, He's a column writer, one of very successful person in the worldly life. He was CEO of Procter & Gamble in Canada. He left his career midstream. But his life has much more to explore than mere improving your balance sheet year after year. And thereafter, he's now almost into the spiritual research. He has written a book, The Difficulty of Being Good. This dilemma of human being has always been there, right from ancient days. But answers are there. All questions of our life have answers, like a book of mathematics, where every unsolved problem has an answer at the end of it. The joy lies in solving those questions. And this is what living, right living is. Any person who has not involved his or her spiritual dimension remains incomplete. Aapne roji jinan December ek kitab hai, ab to shayad nayi generation hai to nahi padhi hogi, par hamari generation ki wo famous book thi. It was an autobiography of Justice M.C. Chagla. Justice Chagla was one of the most envied career, success from every point of view. He was a practicing lawyer of Bombay High Court, then became elevated to judge, also became Chief Justice of Bombay, became a judge of International Court of Justice in Hague. He was Indian High Commissioner to UK, Indian Ambassador to USA, He came back, became member of Rajya Sabha, became education minister. But he never believed in inner life. He always thought the external life is the end of it. And he enjoys parties and everything. But life takes the same shape for everyone. We came alone, we go alone. Even our spouse is not with us in this process. In his case also, his wife passed away before him, his children settled down outside. And he writes at the end of his book, under the caption, personal, "Today I am alone. Nobody is with me, not even my wife and children. The walls of this room bite me. Kamre ki diware mujhe kaatti hain." And he says, "Loneliness is different from solitude. Sunapan ekant se alag hai. In solitude, one is in communication with oneself. Apne se samvad karta hai. Or in loneliness, one is at war with oneself. अपने से संघर्ष करता है, लड़ता है. And today, I envy the faith of those whom I used to question in my heydays." जब मैं अच्छे दिनों में सवाल उठाता था उन लोगों पे जो श्रद्धा रखते थे, उनसे आज मुझे ईर्ष्या होती है. तो ये जीवन का शाश्वत सत्य है कि ultimately we have to know ourselves. This is a question which haunts humanity for a long time. Famous saint, Ramana Maharishi of South India, he has written a book on this, "Who Am I?" Almost 1200 pages book on the question, "Who Am I?" So finding who am I is the rediscovery of life, and I think it was very thoughtful of Mohan Bhai to have conceived of this theme. In fact, we had a lot of discussion on the topic of this conference, and very appropriately we arrived at the rediscovery of life. My friends, engineers and scientists, they are in a better position to understand this science of life. And I think today science and spirituality are merging from two roots. I know two Nobel laureates. One is in the medical field. Now science is also not a watertight compartment. They are all merging. There is no difference between physics, mathematics, medicines and all. And that is what brings us to the universality, to one source. There is a scientist, when I was Secretary of Medical Education in UP, he came for a convocation and he said, aap Hindustani kyon videshon mein daudte hain? Aapke yahan sari science maujood hain. Look within your sources. He was inventor of MRI, a well-known technique. He got a Nobel Prize mila tha uspe. And now he is on working, how does inner development help your body? Last time, jab wo Lucknow aaye, unhone MRI images dikhai. When you are positive, your image changes. When you are negative, you are jealous, you are angry, your image changes. So it's not that कि कोई हम ब्लाइंड बिलीफ यहां के लेके जाएं. इट इज ऑल साइंस. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई से साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दीज साइंसेस. आई विल गिव फिनिश माय टॉक बाय कोटिंग टू पर्संस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. वन इज मिस्टर एम विश्वेश्वरैया, हु डज नॉट नो हिम. ही वॉज ए स्टेट्समैन. You read his biography, he was the top administrator of Mysore estate. Engineering was just one of his qualifications. He was an all-rounder. Second person is, he's a living Mr. E. Sridharan. He was chief of Delhi Metro, now he's also... In fact, he is my spiritual brother. I first met him in November 2001 after he had completed Konkan Railway project in Goa, Bombay route. And he was just taken over Delhi Metro. We met in a spiritual place. And first time when I met, we were together on dining table. I asked him, sir, what is the secret of your success? And I put a condition, please tell me in one line. Ek line mein mujhe uttar do. He was smarter than me. He bole, why do you need one line? My answer will be in one word. And can you think what was that word was? He said, keep your integrity. And integrity is not a word, it is a textbook. हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक चार्ट बना है 35 गुण. कहीं गीता में 26 गुण के रूप में आया है. सक्सेस के लिए एक गुण की जरूरत नहीं है. यू नीड ए पैकेज ऑफ लाइक ए गुड व्हीकिल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वन गुड पार्ट. इट हैज टू हैव सेवरल गुड क्वालिटीज. आज जो डायलेमा है हमारा, अच्छे लोग जो ये समझते हैं कि मैं तो अच्छाई की वजह से सफर कर रहा हूं और बुरा आदमी बुराई की वजह से प्रॉस्पर कर रहा है, ये गलत कंसेप्ट है. द फैक्ट इज आई सफर बिकॉज ऑफ माई मिसिंग क्वालिटीज. माई गुड क्वालिटीज आर माई स्ट्रेंथ. बट जैसे मोहन भाई कह रहे थे कि सब कुछ आता है पर टेम्पर लूज है आपका. विल यू बी सक्सेसफुल और फेल्योर? सब कुछ आता है, आप में टॉलरेंस नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, कंपैशन नहीं है. इनफैक्ट जो भगवत गीता में 26 गुण हैं, उसमें वो ऑनेस्टी वगैरह तो बीच में है. द फर्स्ट क्वालिटी इज फियरलेसनेस, अभयम. एंड द लास्ट क्वालिटी इज ह्यूमिलिटी, विनयम. तो ये अगर हम कंप्लीट पैकेज ऑफ गुण डेवलप करें, एंड फ्रॉम दैट रेस्पेक्ट life is not a one time of rediscovery. Every moment is a discovery. We are changing every moment. And my effort should be, in next moment, आई शुड बी ए बेटर पर्सन, ए शेड बेटर देन वॉट आई एम नाउ. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ए एवर गोइंग प्रोसेस एंड वेन एवर इट बिगिन्स इट इज अर्ली. अभी एक उदाहरण दिया था सुबह शायद वाल्मीकि का दिया था. ए डकॉयट कैन बिकम ए सेंट. सो दैट इज वाई आई थिंक शीलू बहन सेड एवरी सेंट हैड ए पास्ट एंड एवरी सिनर इज हैज ए फ्यूचर. सो दैट प्रोसेस शुड गो ऑन एंड आई एम श्योर दिस कॉन्फ्रेंस विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एट दिस ओकेजन. थैंक यू वेरी मच.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता राकेश मित्तल जी का. आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में जीवन की व्याख्या हमारे सामने रखी कि निश्चित रूप से जीवन तो चलने का नाम है और निरंतर यहाँ रात दिन चलना है, यानी निरंतर आगे बढ़ना है और हर पल में हम अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं. इसलिए किसी ने कहा है कि ये मत पूछो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये मत पूछो कि जिंदगी में कितने पल हैं, परंतु ये समझो कि किस पल में जिंदगी है. हम जो पल जी रहे हैं हर पल में देखें कि हम कितनी जिंदगी जी रहे हैं. आज का दिन एक विशेष दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि एक इतना विशाल समूह जिसमें खास भारत ही नहीं विश्व का नव निर्माण करने वाले वैज्ञानिक और अभियंता जो यहाँ बैठे सभा में, ये पूरा ही विशाल समूह जीवन के एक नए पथ पर आगे बढ़ने जा रहा है. और इस पथ पर आप सभी का विशेष स्वागत करने के लिए हमारे बीच आ रहा है हमारा मधुर वाणी ग्रुप. आप सभी ने कल भी इनका गीत सुना और आज हमारे बीच पुनः हमारा मधुर वाणी ग्रुप है. एक बहुत ही प्रेरणादायी गीत और आपका पुनः नया स्वागत करने के लिए हम सभी करतल ध्वनि से हमारे इस मधुर वाणी ग्रुप का स्वागत करते हैं.
ओम शांति. जीवन में नए जीवन की खोज करें, अंतर की शक्तियों का शोध करें. मानो मंगल में जीवन ढूंढ रहा, जीवन में मंगल को आओ खोज करें, जीवन में मंगल की आओ खोज करें. इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है.
जीवन की खोज करें, जीवन में नए जीवन की खोज करें. अंतर की शक्तियों का हम शोध करें, जीवन में नए जीवन की खोज करें. मंगल में मानव है जीवन ढूंढ रहा, जीवन में मंगल की आओ खोज करें. स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम. सफलता का संदेश है, साहस से आगे बढ़ने का आदेश है। आगे बढ़ने का आदेश है, चल कर ही तो मंजिल कोई पाता है, धीरज धरने को कहता अखिलेश है। व्यवहारिक प्रज्ञा का हम बोध करें, जीवन में नए जीवन की खोज करें, जीवन में नए जीवन की खोज करें। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। प्यारे आए हैं, जगत नियंता आपको यहाँ बुलाए हैं, वैज्ञानिक अभियंता प्यारे आए हैं, जगत नियंता आपको यहाँ बुलाए हैं। आए नवयुग का मिलकर निर्माण करें, भाग्य बनाने का हम अवसर पाए हैं, प्रभु कार्य में आओ हम सहयोग करें, जीवन में नए जीवन की खोज करें, जीवन में नए जीवन की खोज करें। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम।
हमारी मधुरवाणी ग्रुप का बहुत ही सुंदर प्रेरणा हमें दी, क्या रीडिस्कवर करें। अब मंगल पर जीवन ढूंढने के बजाय जीवन में मंगल को ढूंढने का प्रयास हम शुरू करें। और निश्चित आज से हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने जीवन में मंगल को और खुशियों को ढूंढना शुरू करें। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार पानी की कुछ बूंदे प्यास बुझा सकती हैं, रक्त की कुछ बूंदे किसी की जान बचा सकती हैं, उसी तरह ईश्वरीय ज्ञान की कुछ बूंदे जीवन भी संवार सकती हैं। और इन ज्ञान की बूंदों से हम सबका जीवन संवारने के लिए आज हमारे बीच हमारी संस्था के सेक्रेटरी जनरल परम आदरणीय श्रद्धेय निर्वेर भाई जी, जिनका संपूर्ण जीवन ही हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप हमारी संस्था के प्रथम इंजीनियर हैं। आप नेवी में इंजीनियर थे, परंतु संपूर्ण विश्व का ही नवनिर्माण करने का परमात्मा द्वारा दिया गया संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में, इस विश्व की सेवा में समर्पित किया। परम श्रद्धेय आदरणीय निर्वेर भाई जी के मुखारविंद से निकले हुए उन ज्ञान की बूंदों से चलिए आज हम सब अपने जीवन को संवारते हैं। परम आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज की सभा की चेयरपर्सन परम आदरणीय सरला दीदी जी और विशेष हमारे आज के विशेष वक्ता भ्राता राकेश मित्तल जी, इस कार्यक्रम को पूरा ऑर्गेनाइज करने के निमित्त भ्राता मोहन सिंगल जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शंकरलाल तिवारी जी,
परम श्रद्धेय आदरणीय साक्षात देवी मूर्त दादियां हमारे बीच में उपस्थित हैं, और दादियों की दृष्टि से वो आशीर्वाद, वो वरदान वो हम सभी के बीच लुटाते हुए मंच पर आसीन हो रही है। सभी भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ परम आदरणीय दादियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान करें और उसके पश्चात हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय निर्वर भाई जी के अमृत वचन हम सभी सुनेंगे।
परम आदरणीय दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी और बहन नीरू अब्रोल जी तथा अन्य सभी मंच आसीन वक्तागण, सभा में उपस्थित भारत तथा नेपाल से आए हुए आप सभी गणमान्य आदरणीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, आज का दिन बड़ा शुभ दिन लग रहा है। क्यों? सबसे पहले तो बात है जीवन की पुनर्खोज, आश्चर्यवत बात है। हम सब जीवन जी रहे हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि इसकी पुनर्खोज होनी चाहिए। क्या बात है, कारण क्या है, ऐसा प्रश्न क्यों उठना चाहिए? और उसका एक ही कारण है, संक्षिप्त में सुनाऊंगा कि हम जो हैं वो हम होकर के जीना नहीं चाहते, और जो नहीं है उसको हम अच्छी तरह सजा करके ऐसा समझते हैं कि यही हम हैं। आज आप सबका मेडिटेशन का पहला दिन था और उसमें क्या सुना आप सभी ने, कौन है हम, कौन है? कहेंगे हम आत्मा हैं। प्रश्न उठता है सुबह से रात तक कितना समय ये याद रहता है कि हम आत्मा हैं? रहता है याद? किसी से पूछो, आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो, नाम किसका बताएंगे? शरीर का। तो सबसे पहली खोज तो यही है, स्वयं की खोज। कहानी के रूप में अगर मैं अपना सुनाऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंडियन नेवी से, बड़ा उमंग था रेडार और अंडरवाटर डिटेक्शन सेट्स ऐसी ऐसी बातों का, उसकी थ्योरी सब जान ली, प्रैक्टिकल देख लिया, रेडार की क्या कहां तक पहुंच है सब समझ में आ गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन उठा, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, क्या इतने तक ही सीमित है सब? उसके फलस्वरूप एक खोज, और खोज किस बात की, Who am I? मैं कौन हूं? दूसरा, परमात्मा कौन है? हम परमात्मा के साथ कौन सा संबंध जोड़ें? इस तरह के क्वेश्चंस कुछ किताबें पढ़ने से, थोड़ा प्रश्न उठते हैं, कुछ अभ्यास करने से प्रश्न उठते हैं, फर्स्ट फरवरी पहली बार मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गया और वहां पर इन सब क्वेश्चंस का उत्तर कुछ दिन के अंदर मिला, लेकिन मेरी जो आंतरिक इच्छा थी कि सिर्फ जानकारी के लिए, तो किताबें मैंने बहुत पढ़ ली, स्वामी राम तीर्थ की पढ़ ली, विवेकानंद की पढ़ ली, गांधी जी की ऑटोग्राफी पढ़ ली, और भी कुछ पढ़ ली, वो जितनी पढ़ी अभ्यास थोड़ा बहुत किया, और एक किताब ऐसी पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो पढ़ने के बाद रात की नींद ही चली गई थी। लेकिन जब सेवा केंद्र पर बॉम्बे में जाना हुआ और वहां पर ये पहले जो प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सब बातों का जानकारी मिलने के बाद जब अभ्यास किया, मेडिटेशन की, तो समझ में आया कि वास्तव में मैं कौन हूं। स्वयं को ऐसा लाइट फील किया, जैसे सुनते हैं आत्मा लाइट स्वरूप है, दिव्य लाइट है, स्टार लाइक है, उसका एक्सपीरियंस, और उस समय उस एक्सपीरियंस में इतना अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया। उसके बाद था परमात्मा की याद, उनके परिचय के अनुसार, वो भी बहुत आनंद आया उसमें। लेकिन आप थोड़े दिन में, यहां 2-3 दिन में, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की हिस्ट्री को जानेंगे कि ये सब ज्ञान जिनके द्वारा मिला, ब्रह्मा बाबा जिनको हम कहते हैं, इन्होंने तो ढक दिया उनको पूरा ही, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स रिवील करने की बजाय उनको ढक दिया है पूरा। इसके पीछे है उनका फोटो, ब्रह्मा बाबा लौकिक दुनिया के हिसाब से ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, डायमंड मर्चेंट, मोस्ट सक्सेसफुल फैमिली मैन, वो सब होने के बाद भी उनकी खोज खत्म नहीं हुई थी, और उस खोज में उन्होंने 60 साल की उम्र में परमात्मा का दर्शन किया, रियलाइजेशन हुई उनको, साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ, ही वॉज डायमंड मर्चेंट, जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए डायमंड्स का एक हार बना करके तैयार करके उनको दिया था, जो अभी भी टावर ऑफ लंदन, वहां पर वो हार रखा हुआ है। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद वास्तविकता की खोज थी, परमात्मा की खोज थी, और 60 साल की उम्र में जब उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसमें पता चला परमात्मा कौन है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और परमात्मा की तरफ से उनको आदेश मिला कि आप निमित्त बनो। आज सारी दुनिया इस अंधकार में है, ना स्वयं को जानते हैं ना पिता परमात्मा को जानते हैं। सबके अंदर जागृति लानी है ताकि अपनी जीवन को जीना सीखें, फिर से अपनी जीवन को रीडिस्कवर कर सकें। और उन्होंने उस समय अपने पार्टनर को एक टेलीग्राम भेजा। बड़ी आश्चर्य की बात है, अल्फ को अल्लाह मिला, स्वयं को अल्लाह मिला, बे पार्टनर जो है तुम्हें बादशाही मिली। और उनको ये भी लिख दिया, मेरा जो हिस्सा हो मुझे भेज देना बस। हैदराबाद सिंध में उन्होंने सत्संग शुरू किया। वो सत्संग बढ़ करके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। और आप सोचिए, कोई संन्यास लेता है, कुछ करता है, तो अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे के जाता है। उन्होंने ये नहीं किया। उनका जो कुछ भी उनको हिस्सा मिला, दैट बिकेम द सीड मनी फॉर स्टार्टिंग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहली जनवरी 1937 के दिन उन्होंने अपनी विल लिखी। उसमें क्या लिखा, मैं लखीराज, उनका नाम दादा लेखराज था, लखीराज अपना तन मन धन सब ओम मंडली माता के चरणों में समर्पित करता हूं। साइन क्या किया, ओम। और उस समय उन्होंने बहुत एक विचित्र बात की, 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया, बहनों का, जिसमें 3 माताएं 5 कुमारियां 18 साल से ऊपर की उम्र की। क्यों, बाबा को आदेश था कि आपको निमित्त बनना है विश्व परिवर्तन करने के लिए। विश्व परिवर्तन का मतलब है विश्व की कॉन्शियसनेस को परिवर्तन करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से उसको सोल कॉन्शियस बनाना है, गॉड कॉन्शियस बनाना है। उसके लिए उनको तैयार करना था। और उसमें टीचर्स, आज भी दुनिया के अंदर सबको पता है, बहनें माताएं टीचर्स, दे आर मच बेटर देन मैन। और उसमें एक और राज है, यू ट्रांसफॉर्म ए मैन, यू ट्रांसफॉर्म वन पर्सन, यू ट्रांसफॉर्म ए वुमन, यू ट्रांसफॉर्म द होल सोसाइटी। तो इस तरह से जो रीडिस्कवरी उन्होंने खुद की, उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, उस बात को लेकर के। और मैं जब पहली बार उनसे 13 जुलाई 1959 को माउंट आबू में मिला था, आई हैड द विजन ऑफ गॉड, द सुप्रीम सोल उनके मस्तक के ऊपर। और उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया, 20 साल की उम्र थी मेरी, कि आज से ये जीवन आपकी सेवा के लिए होगा। और 25 साल की उम्र में मैंने अपना जॉब छोड़ करके पूरा समर्पित जीवन ईश्वरी सेवा के लिए दिया। 10 साल उनका सानिध्य मिला, बहुत कुछ उनसे देखने से, इंटरेक्शन से, साथ खेलने से, बहुत सारी बातें, महीनों महीनों तक उनके सानिध्य में रहे, बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने एक ही महामंत्र मेरे कान में दिया, बच्चे जब तक सत्ययुग की स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक आराम नहीं करना है। वर्तमान कलयुग है, सत्ययुग की स्थापना हो रही है और आप हम सभी आज पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, कॉन्फ्लुएंस एज में हैं। आज आपको भी अपने आप की जागृति मिली, अपनी स्मृति मिली, अपने आप को पहचानने का मौका मिला, परमात्मा पिता को पहचानने का मौका मिला। आपका जीवन आज से बिल्कुल एक नया जीवन बनेगा और उसके फलस्वरूप नई सृष्टि बनाने में आपका सहयोग मिलेगा। ओम शांति।
आदरणीय भाई साहब ने हम सभी को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया, उनके बारे में विस्तार से और आगे के सेशंस में हम सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा जो परमात्मा पिता के स्वयं माध्यम थे, एक विशेषता थी कि वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने फॉलोअर्स तैयार नहीं किए परंतु आध्यात्मिक लीडर तैयार किए। और आदरणीय भाई साहब और दादियां वो आध्यात्मिक लीडर आज हमारे बीच में हैं। और दादियों को भी हम देखते हैं, हमारे बड़ों को देखते हैं कि वो भी ऐसे आध्यात्मिक लीडर तैयार कर रहे हैं। तो हमारी दादियां साक्षात आध्यात्म की वो प्रतिमूर्त सूर्य की भांति आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। दादियों के अमृत वचन हम सभी सुनेंगे, उसका अमृत पान तो करेंगे ही, लेकिन परमात्मा पिता ने अपनी सर्व शक्तियां उस ज्ञान गंगा को इस धरती पर उतारा, वो सारी शक्तियां वो ज्ञान दादियों के अंदर समाया हुआ है। और इसलिए दादियों के वचन ही नहीं परंतु उनके नयन, उनके आध्यात्मिक शक्ति हमें जीवन को प्रेरणा देती और परिवर्तन करने की शक्ति देती है। तो आज हम सभी को ये सुनहरा अवसर मिला है, डबल रोटरी खुली है, जो दोनों ही दादियां आज हमारे बीच उपस्थित हैं, तो क्यों ना हम इस अवसर का पूरा पूरा लाभ लें। दादियों के नैनों से जो आध्यात्म की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, हम सभी दो मिनट के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे और अपने नेत्र खुले रखकर दादियों के नेत्र से, उनके मस्तक से जो आध्यात्मिक तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, उन तरंगों को आज हम रिसीव करेंगे और जीवन को एक नई दिशा देने का एक दृढ़ संकल्प हम सभी करेंगे। आज इस सभा का वातावरण पूर्णतः अलौकिक है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ प्यार और शक्तियों की बारिश हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, हमारे बीच श्रद्धेय परम आदरणीय अलौकिकता की साक्षात मूरत दादी हृदय मोहिनी जी विराजमान है। दादी जी आपके लिए तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है, परंतु रोशनी तारों की फलक पर चमकती है और खुशबू फूलों की बाग में महकती है। दुनिया ढूंढती है जिस शक्ति और रूहानियत को, वो तो दादी जी आपके चेहरे पर छलकती हैं, आदरणीय दादी जी के अमृत वचनों से आज हम सब अपने दिल, अपनी झोली, मन, बुद्धि सबको ओतप्रोत करेंगे।
ओम शांति। आज आप सबको देखकर हमें खुशी तो हो रही है, लेकिन खुशी के साथ ये भी उमंग आ रहा है कि क्यों नहीं हर एक बच्चे के नाते से बाप को याद करना तो आदत ही है, और हर एक बच्चा बाप को भूल भी नहीं सकता है। तो परमात्मा हमारा पिता है, पिता के रूप से अगर परमात्मा को देखो तो दाता भी है, पिता भी है, सब संबंध निभाने वाला है। उस परमात्मा को, पिता को, बंधु को, जो भी कुछ कहो, उसको याद करना तो हमारा स्वाभाविक है। पिता को भूलना तो राइट नहीं होता है ना। तो परमात्मा हमारा पिता है ये तो सब मानते हैं, मानते हो ना आप परमात्मा को पिता है, मानते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, मानते तो है सभी, लेकिन जानते है वो है कौन और वो क्या चाहते हैं हम बच्चों से? छोटी सी बात ही है। वैसे भी जो भी लौकिक पिता है वो सभी ये तो जरूर चाहते हैं कि हमारा बच्चा लायक बने और लायक बन करके दुनिया के काम में आवे। तो हम देखें कि हमारा काम कौन सा है। हमारा काम यही है एक दो को, एक पिता के बच्चे हैं उस नाते से एक दो के हमेशा कल्याण का ही सोचे। जैसे छोटी सी फैमिली आपकी है उसमें क्या सोचते हो? बच्चा भी लायक बने, जो भी पति है, बच्चा है, बच्ची है, लायक बने। तो आप सोचो आप जो चाहते हो वो परमात्मा यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। वो कहते हैं मेरा एक एक बच्चा विश्व के लिए कल्याणकारी बने, ये तो आप सब भी चाहते हो ना, तो हम सभी कल्याणकारी विश्व के लिए बने, चाहते हो? हाथ उठाओ, देखो हाथ कितने अच्छे उठाए हैं। और मैं समझती हूँ तो दिल की चाहना सभी की यही होती है, लेकिन बीच बीच में कुछ रुकावट पड़ जाती है, उसको मिटाने की हिम्मत चाहिए। वो अगर आपको चाहिए तो हम बहने आपको दे सकती है। जो भी दिल में खुशी चाहिए, दिल में उमंग चाहिए, दिल में प्यार चाहिए, जो भी आप समझते हो चाहिए, वो चाहिए आपको यहाँ के संग से मिल सकता है। आप करके देखो, और इजी है, कोई छोड़ने की बात नहीं है। बुराई छोड़ना वो तो सभी चाहते हैं, बाकी कुछ छोड़ना तो नहीं है। आप कहेंगे आप लोग छोड़ के आ गए, लेकिन हम तो छोटेपन में माँ बाप के छुट्टी से बड़े उमंग से पत्र द्वारा हमको छुट्टी दी और हम खुशी खुशी से आए, और जिस खुशी से आए उस खुशी से ही हमने अनुभव किया। तो अगर खुशी चाहिए, क्योंकि जीवन में बातें तो आती है, बातों का आना ये तो खत्म नहीं होता है, लेकिन हम उनों को कैसे आराम से समझ करके सोच करके हर बात को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हम सबका अनुभव है कि अगर हमारे में परमात्मा की याद है तो जहाँ परमात्मा साथी है वो काम कुछ रह सकता है क्या? परमात्मा का वायदा भी है, पिता है ना, तो परमात्मा पिता का वायदा भी है, बच्चे आप एक कदम उठाओ और मैं 10 कदमों की मदद दूंगा। और हमने प्रैक्टिकल देखा कि एक कदम का 10 कदम क्या 100 कदम परमात्मा मदद देता है। प्रैक्टिकल हम लाइफ पास की है तो यही अनुभव हुआ है। तो हम तो यही आपको कहेंगे कि आप आए हैं, ये आपका भाग्य है जो आप यहाँ पहुँच गए हो, और हमें एक एक को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इनका भाग्य कितना अच्छा है जो यहाँ तक पहुँच तो गए हैं। अभी कहाँ तक पहुँचते हैं वो तो आप जानो, लेकिन हमारी यही चाहना है कि जो भी आए हो वो जो सुना है सबका अनुभव भी सुना होगा बीच बीच में, वो करके देखो, जहाँ रहे पड़े हो जो कुछ कर रहे हो वो करो, लेकिन ये थोड़ा अटेंशन रखो परमात्मा के याद का, परमात्मा नहीं भूले बस। और कोई मेहनत नहीं है। परमात्मा हमारा पिता है, आप लौकिक पिता को कभी भूल सकते हो क्या? जन्म वाले पिता को भूल सकेंगे क्या? कुछ भी हो जाए लेकिन पिता को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि पिता परवरिश करता है। वो छोटे से बड़ा करने में कितनी मेहनत एक एक बच्चे से करते हैं। तो पिता जो चाहता है वो बच्चा चाहता ही है, ये तो एक नियम है। कोई कोई ऐसे होते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी पिता की आज्ञा मानते हैं। तो परमात्मा हमारा पिता है, वो हमको क्या कहता है वो भी तो मानना चाहिए ना। और परमात्मा ऐसा पिता है जो हमको एक कदम उठाओ तो 10 कदमों की मदद करता है। ऐसे पिता हमको कहता है सिर्फ मुझे याद करो और कुछ नहीं कहता है, मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको प्राप्ति होगी वो आपके जीवन का मूल आधार है। मूल आधार हर एक का क्या है? हर एक सोचता है हमारी जीवन जो है अच्छी हो, सुखदायी हो, और किसके मदद हो तो मददगार भी बने, यही सोचते हैं। और ये सोच तो हर एक का पूरा हो भी सकता है, लेकिन इतना सिर्फ उमंग उत्साह हो, कोई भी बात जीवन में आवे उसमें परेशान नहीं हो। अरे परमात्मा के बच्चे हैं, क्या नहीं सामना कर सकते हैं? परमात्मा पिता को याद करेंगे तो ताकत आ जाएगी, और कितनी भी मुश्किल बात आप कर सकते हो, ये हमारा अनुभव है। जो चाहो आप बन सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो, लेकिन क्या है उस लगन को लगे रहे। ऐसे नहीं कोई बात आई तो हार्ट फेल हो जाए थोड़ा, नहीं। बातें तो आएंगी लेकिन बातें भी हमको बहुत सिख्या देती है। बातें हमको कोई बले पड़ी क्या भी लेती है बात, लेकिन साथ में सिख्या बहुत देती है, हमको योग्य इतना बनाती है जो हम संसार में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। तो मैं तो यही आपको कहूंगी कि अगर जीवन आपको बनानी है, भाई बनाई तो है जीवन, लेकिन इसमें अगर सुख शांति चाहती हो, हर एक चाहता है मेरी लाइफ जो है ना बहुत सुखी हो, ये हो, उसके लिए सिर्फ परमात्मा को भी अपना बाप याद करो। बाप ने, बाप की कोई भी बात होती है बच्चा मानता है। तो परमात्मा हमारा जन्म जन्म का पिता है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का पिता वो ही है। तो उसकी बात क्या नहीं मानेंगे? वो कहता कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात कहता है मुझे याद करके काम करो, बस मुझे भूलो नहीं, और मैं जो सिख्या देता हूँ उसको अटेंशन दे करके प्रैक्टिकल में लाओ, बस। ये मुश्किल है क्या? पिता की आज्ञा मानना मुश्किल है? हाथ उठाओ, सहज है ना? तो परमात्मा पिता जन्म जन्म का है, वो तो एक जन्म का पिता है, लेकिन जन्म जन्म का पिता है उसकी बात मानने में क्या है? बहुत खुशी होंगी, हमको अनुभव है परमात्मा ने क्या कहा और मैं क्या कर रही। बस उसके मत पर चलना। तो हम तो आप सबको देख करके बड़ी खुश हो रही है कि आप सुनने के लिए आए हैं और बनने के इच्छुक है तभी सुनने के लिए आए हैं। तो जो भी कोई नए आए हो उनको मैं दिल से कहती हूँ कि आप इस ज्ञान को समझ को धारण करके चलेंगे तो आपको मेहनत एकदम नहीं करनी पड़ी, फल उसका मिलेगा। तो ओम शांति।
परम आदरणीय दादी जी, आपकी उपस्थिति ही हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। लेकिन आपने अपने प्यार भरे वचनों से प्यार प्यार में ही हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति और उमंग भर दिया। तो हम सभी जरूर संकल्प करते हैं और याद रखते हैं कि हिम्मत का एक कदम हमारा और मदद के 100 कदम परमात्मा पिता के। और हम सब हिम्मत करेंगे और परमात्मा मदद को प्राप्त कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जो ऐसा संकल्प करते वो सभी एक हाथ की ताली बजाएंगे, दादी को कहेंगे हम ऐसा करेंगे, परमात्मा मदद जरूर लेंगे और हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। कहते हैं जैसे फूलों को खुशबू चाहिए महकने के लिए और परिंदों को आवाज चाहिए चहकने के लिए, इसी तरह हम सबको भी आज शुभ आशीष चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये साल निश्चित ही हम सभी के लिए जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। हमारे बीच परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जानकी जी उपस्थित हैं। शांति, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम, आदरणीय दादी जी के ब्लेसिंग निश्चित ही हमें इस राह पर चलने की शक्ति जरूर देंगे। आदरणीय दादी जी,
मैं 3 बारी ओम शांति में, ओम शांति, ओम शांति, अभी ओम शांति। पहला ओम शांति, मैं कौन? यंगुली, मैं कौन? जब निर्भय भाई बता रहा था, दादी बता रही थी, क्या बता रही थी, मैं कौन, मेरा कौन, अंगुली ये है ना, पहले मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करने का है। 3 बातें प्यारे बाबा ने ऐसी सिखाई है। अभी प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बाबा बोलो, प्यारे बाबा बोलो, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ये सब सभा को देख मैं क्या कहूँ, सभा को देख लगता है सभी बाबा के बच्चे सर्वगुरु संपन्न सेवा का संपूर्ण बनने के लिए तैयार बैठे हैं। सुना मेरी बात, सर्वगुण संपन्न 16 कड़ा संपूर्ण अभी बनना है हमको, बाबा बना रहा है मुझे, बनना है, क्या बनना है, किसी का अवगुण नहीं देखने का, दिखाई नहीं पड़ता है। दादी किसका अवगुण दिखाई नहीं पड़ता है, जहां बाबा है वहां बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको क्या करने का है, तो बाबा जब निर्भय भाई शुरू शुरू की बात सुना रहा है मंडली की बात, मैं तो मंडली की बात आप बहुत पीछे आए हैं, मैं तो बाबा को पहले से ही देखा था, कमाल है मीठे बाबा की, माता है पिता है सखा है स्वामी है सतगुरु है। माता है पहले मुझे याद आता है ओ मंडली में बाबा खटिया पर बैठा था, दृष्टि दे रहा था, बाबा की दृष्टि में इतना सुख मिला क्योंकि शिव बाबा निमित्त मनाया ब्रह्मा बाबा को, समझा, शिव बाबा ने परमात्मा बाप ने निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को, ऐसा निमित्त बनाया जो आज साकार में जो बाबा था वो अव्यक्त होकर के कैसे हमको अपनी भावना दे रहा है। पता है सभी को साकार बाबा कौन है, इस शरीर में होते हुए न्यारा और सबका प्यारा। मैं तो बाबा को ऐसे शुरू में देखा न्यारा सबका प्यारा, पंडु बाबा कीचड़ भी है सतगुरु भी है, हमेशा मैं अपनी बात सुनाती हूँ, बाबा अरे बाबा कौन है कैसा है क्या करता है क्या कराता है, सुना, क्या करता है क्या कराता है, साखी होकर के देखो और बाबा को साथी बना दो, ताली बजाओ ना बाबा को साथी बना दो और साखी होकर के सभा में देखो, डायमंड हॉल में बैठे हैं, दादी डायमंड हॉल में सब जो बैठे हैं डायमंड बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोया रहे, ये मैं भक्ति में भी कहती थी, हीरे जैसा जन्म है तुम कौड़ियों के बिचारी क्यों जीवन खराब कर रहे, कहां कौड़ी, मैं दिखाऊं मैंने देखा है कौड़ी की वैल्यू है, कौड़ी कैसी छोटी होती है पर उसका वैल्यू क्या है, अभी हमारी वैल्यू क्या है, दादी कितनी खुशियां है बाबा बाबा करके, क्या क्यों? हीरे जैसा जन्म है। मैं तो ऐसे महसूस करती हूँ, मेरे भाई क्या कर रहा है? हीरे जैसा जन्म है ना हमारे, हमको 40 साल विदेश में सेवा के अर्थ भरने में बनाया, पर न कभी 5 रुपया या 5 पाउंड मेरे हाथ में नहीं देखा है। मैं क्या जानू, कभी शॉपिंग नहीं की होंगी विदेश में होते हुए। शॉपिंग कैसे की जाती है मुझे पता नहीं है। क्या करेंगे, सफेद कपड़े की था काली, हम मैं सारे मुल्क के वाली सफेद कपड़े। बहुत दिल से प्यार से जैसे बाबा ने सफेद कपड़े पहनाया और खीसा खा ली, पर नशा इतना हम सारे विश्व के मालिक बन रहे हैं। सब विश्व के मालिक है बाबा ने विश्व में राजाई करने के लिए लायक बनाया, विश्व में राजाई करने के लिए। इतना नशा चढ़ा हुआ है, राजाई क्या है? मैं कल परसों अपने बहनों को कह रही थी, भाइयों को कह रही थी, जो मेरे आगे घूमते रहे, मैं नशा चढ़ता है, अभी हम राजाई में बैठे हैं। राजाई में बैठे हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? राजाई क्या है? सच तभी तो रुच, ये सिंधी में कहते हैं सच तो बीटो नच। इतना सच्चाई में प्यार है बाबा के साथ। मैंने बाबा को शिव बाबा जब से प्रवेश हुआ उसके पहले भी देखा था, इतना मीठा इतना प्यारा शिव बोला भगवान, इतना मीठा इतना प्यारा लगता है। देख रहे हैं कोई कोई मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तेरे में ये शक्ति कहाँ से आई है? मेरा बर्थडे कल परसों मनाया, ये परमात्मा बाप की वंडरफुल सर्वशक्तिवान है ना, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, माँ भी है बाप भी है, टीचर भी है सतगुरु भी है, परंतु मुझे लगता है भक्ति मार्ग में स्वामी है मेरा, स्वामी की दा सतगुरु। तो स्वामी जब दिल से निकलता है तो हमारा ये सब जो बैठे हैं यहाँ पांडव भवन में म्यूजियम देखा है, देखा हुआ पांडव भवन में म्यूजियम जो बना भाई, कितना अच्छा म्यूजियम है।
आज दूसरा दिन है
भाई मेरा, अभी ये तो शांति वन में बैठे हैं ना, पर पांडव भवन में जो म्यूजियम बनाया उसमें बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम कौन हो? मुझे बहुत नशा है, हम कौन है, किसके है, क्या कर रहे हैं, हम कौन है, सुनो हम कौन है, किसके हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ो, नशा चढ़ा हुआ है। भाई मेरा, मुझे माइक देते हो तो माइक उठाने में ले, जब बोल उठाए मुझे माइक क्यों देते हो, आप इतनी अच्छी बातें सुनाओ मैं कम सुनाऊंगी, बस कैसे पूरा करो, दादी कैसे पूरा करो। मैं सभा को देख खुश हो रही हूँ, सलाह दीदी है, सलाह बाबा ने कहा इसको ऐसा बनाओ, बाबा ने कहा जो आज सलाह दीदी है इस प्रोग्राम की, क्या कैसे दीदी बनी, दीदी दादी कैसे दादी बनी, कमाल है उसकी। मैं दादी को देखती हूँ तो मेरी दिल कहती है मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं। एक हमारा भाई है वो गीत गाता है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें देखता रहूं, क्यों देखता रहूं, क्यों देखता रहूं भाई साहब, क्यों देखता रहूं, मजा आता है देखने में। मैं बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं। ये यहाँ बैठी है ना, तो ये बैठी है ना, शिवानी है ना, कहते बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं। अच्छा ओके, ओम शांति, मेरा ओम शांति, ओम शांति, इशारा मिल रहा है। काम नहीं लो, सुनना सुनाना सहज है। अच्छा ये भी नया बना है,
कैंडल लाइटिंग है।
चलो ओके।
आदरणीय दादी जी को हम सभी ने देखा और सुना भी। आप सभी जानते हैं कि दादी जी की उम्र अभी क्या है। दादी जी ने 100वें वर्ष में अभी प्रवेश किया है। 1 तारीख को दादी का 99वें जन्मदिन मनाया, तो दादी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों के साथ। इस उम्र में भी आप देख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रही हैं और एक ऐसे आध्यात्मिक लीडर बनकर और हम सबको भी प्रेरित कर लीडर बनाकर चला रही। दादी जी की एक बात जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है, इस उम्र में भी दादी जी कहती है मेरा हाथ कभी कांपता नहीं है। तो पूछा क्यों, कहा कि ये हाथ भगवान के हाथ में दिया है तो कांपेगा कैसे है। हमारी दादियां हमारे बीच में आएंगे, हमारे मंच को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर हम उद्घाटन करेंगे। साथ ही हमारे और भी जो अतिथि जिनको विशेष निमंत्रण दिया है वे हमारे बीके भाई बहने भी।
मूर्ति मिस्टर एसिचार्य मिस्टर देवेंद्र टंडन कंपनी
बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं,
बदे सबसे प्लीज करो विजल भाई अनुभूति अरोरा भाई को मेट
देखता रहूं,
चंद्रिका बहन हिम्मत नगर दिव्यानी बहन हैदराबाद गिरिजा बहन न्यू दिल्ली ज्योति बहन ज्योति बहन न्यू दिल्ली किरण बहन दिल्ली पीयूष भाई काची बहन कमला बहन फ्रॉम मुंबई संगीता बहन सल्ला बहन फ्रॉम पानीपत सौरभ गुप्ता फ्रॉम यूएस सुरेश गुप्ता नरेश गुप्ता विनोद बहन जब से
बसाया है दिल में तुम्हें हम जब से बसाया है दिल में तुम्हें हम सबसे मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम सबसे मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम खुशियों के झूले में झूलता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं देखता रहूं हो पापा देखता रहूं देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं पास तेरे आते ही बाबा सब भूल जाऊं पास तेरे ही आते बाबा सब भूल जाऊं एक तेरी महिमा एक तेरी महिमा में गाता रहूं और गाता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं देखता रहूं हो पापा देखता रहूं बाबा देखता रहूं दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं तेरे में हो जाऊं ऐसे बाबा 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 ओ प्यारे मेरे बाबा 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 ओ मेरे कर बाबा
बाबा मेरे बाबा
अनुरोध है कि कॉन्फ्रेंस खत्म। कहते हैं कि जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस चलने का हौसला अगर आप जैसा हो तो आप जैसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। निश्चित रूप से ऐसी एक शख्सियत को मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड न्यू दिल्ली, जो कि एक रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर है, उसके आप चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और एक महिला होने के हिसाब से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बीच पहुंची माननीय बहन नीरू एब्रोल का हम सभी इस कार्य के लिए बहुत बहुत जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
मुझे लगता है कि इतने क्षण जो हमने अभी महसूस किए, लोगों की जो हमने बातें सुनी, अब कुछ रहा नहीं कहने को, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लगेगा कहने को, पर सिर्फ यही है कि जो डायस पे बैठे लोग हमारे साथी भाई बहनों, मेरा ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई मेरा जो कनेक्शन रहा, और पहले मैं सुना करती थी और माउंट आबू वहाँ पे मैंने देखा भी था, पर मेरा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। पर अब जब से मैंने 26 साल स्टील अथॉरिटी में बताए हैं और 7 साल अभी मैंने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में बिताए हैं, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी कुछ 2-3 साल पहले ही दिल्ली में से मिस्टर पीयूष ये हमारे ऑफिस में आए, और उस टाइम हमारा विजिलेंस वीक होने वाला था, तो पहली बारी मैं इनसे मिली, पहले मैं मिली नहीं थी, तो ये आए तो इन्होंने जैसे हमारे साथ हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन हुई, जैसे इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, जैसे इनकी अपनी पर्सनालिटी थी, तो बहुत इम्प्रेस हुई मैं, क्योंकि इनके साथ ब्रह्म कुमारी गिरिजा भी थी, और हमने कहा अच्छा आप एक हमारा प्रोग्राम कर दें, और इन्होंने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम किया, जिससे हमारे एक्चुअली सभी को पता है कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो टेंशन भी रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, फैमिली के हुए, पर्सनल के, प्रमोशन नहीं हुई, बहुत सारी चीजें जिससे लोग अफेक्ट होते हैं और अपने मानसिक तनाव में बहुत रहते हैं। तो इनका जब हमने लेक्चर इन्होंने दिया वहां पे, लोगों को मेडिटेशन कराई, और मेडिटेशन कराई एंड हॉल में ही हमने किया, सब कुर्सी पे ही बैठे हुए थे हमने किया, पर जो इम्पैक्ट आया वो हमें इतना अच्छा लगा कि लोगों ने कहा कि हमें और भी यहाँ पे और सेशन हमारे कराते रहें। तो हमने फिर उसको, उस कार्यक्रम को आगे रखा, फिर जब हमारा एनवायरमेंटल वीक हुआ तब हमने बुलाया, हमारे 4 यूनिट्स हैं, पानीपत, भटिंडा, नंगल, विजयपुर, और यहाँ पे मेरा टूर होता रहता है, मैं वहाँ जाके देखती रहती हूँ, तो इनवेरिएबली मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मुझे, जैसे पानीपत गई तो वहाँ पे जो ब्रह्म कुमारीज का जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है वो जरूर मुझे मिलने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, सिमिलरली भटिंडा, नंगल, और हमारे यहाँ वहाँ पे भी ये काफी सेशंस लेते हैं। तो आई फील कि एज कॉर्पोरेट जो हैं, जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, एक तो आप यहाँ करेंगे बट आप अपने कॉर्पोरेट्स में ये और भी करा सकते हैं, बिकॉज आजकल एवरीवन इज अंडर टेंशन, तो हाउ टू कूल इट, कि आपका जैसे आपका आ रहा रीडिस्कवरी, बिकॉज ऑन द वे हम कुछ भूल गए हैं, हमें अगर हम जूनियर मैनेजर हैं तो असिस्टेंट मैनेजर बनना है, डिप्टी मैनेजर बनना है, जनरल मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, चेयरमैन बनना है, इसी भागदौड़ में हम रह गए हैं, पर मुझे लगता है कि साथ साथ हमें अपनी जो चीजें जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है वो जरूर हम याद रखें। मेरा एसोसिएशन जो यहाँ का महामंत्र है ओम शांति, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, पर मेरा इसका एसोसिएशन बहुत पुराना है, हमारे गुरुजी हमें बताया करते थे कि अगर किसी टाइम भी आपको अपने प्राण और मन को मिलाना है उसके लिए आप ओम शांति करिए, जब सांस इनहेल करते हैं तो ओम करिए, जब छोड़ते हैं तो शांति, तो इनवेरिएबली आपको इसमें जस्ट लाइक आपका एकदम मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और अगर आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो जैसे माला में मनके बनते हैं ऐसे आपका अपने प्राण भी चलेंगे और आपका जो ऐसे वो कहते हैं ना मोक्ष की पगडंडी है इसी वे पे जाती है। तो ये महामंत्र आपका सिर्फ कहने पे नहीं करना चाहिए, ये आप ऑटोमेटिकली आई थिंक ड्यूरिंग द डे यू कैन गो ऑन डूइंग इट। इसमें आपको कोई आपका ना तो कोई एनर्जी लगती है एंड इट इज वेरी आराम से किया जाता है और आप करेंगे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अपना जो संतुलित है अपने शरीर का संतुलन है वो कितना बढ़िया बन जाता है। और इसके अलावा मेरा बाकी तो ओम सबको पता ही है कि अ उ म से बना हुआ है, अ परमात्मा का वाचक है, उ आत्मा का है, म प्रकृति का है। तो हमें जो करना है हमारी आत्मा को ओम की तरफ लेके जाना है ना कि प्रकृति के जंजाल में हमें फंसाना है। तो ये आप सब ध्यान रखें। बाकी आप सब आए हैं दूर दूर से यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है इसी से आपको आधी शांति तो वैसे ही मिल जाती है। तो जब आपके तीन दिन जो आप गुजार रहे हैं अपने अच्छे दोस्त बनाइए, अपने जितना भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे फुल हार्ट से करिए पूरा। उसमें जितने इनके सेशन है जो मैं सुन रही थी बहुत सुंदर सेशन ये रख रहे हैं उसको पार्टिसिपेटिव बनाए और जैसे कहते हैं ना कि अपनी लंग्स को ड्राई क्लीन करके जाए कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जो दिल्ली से आए होंगे उनको लगता होगा कि एकदम ही बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट है तो इसका महसूस करें। तीन दिन बहुत बढ़िया से रहें और अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जो मैं पहले कह रही थी ड्राई क्लीन अपने लंग्स को करके जाएं। बाकी बीइंग अ साइंटिफिक टेम्पर आप लोग सब साइंटिस्ट हैं तो ये आपको अपनी फैमिली में भी फैलाना है अपनी सोसाइटी में भी फैलाना है टू हैव दैट साइंटिफिक टेम्पर। रिचुअल्स में बहुत नहीं जाएं, अगर कुछ करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से करें सोच समझ के करें। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं आप ध्यान में भी जा रहे हैं तो बड़े समझ से करें बड़े ध्यान से करें। सिर्फ एज अ रिचुअल मत करें कि ये रिचुअल मैंने टाइम निकालना है इसके लिए मैंने करना, ये प्लीज मत करिए क्योंकि रिचुअल से हमें बाहर आना है अपने सेल्फ रियलाइजेशन करना है। और बाकी तो यू डिस्कवर योर सेल्फ व्हेन यू हैव कम हियर। इट्स नॉट अ तीन दिन का कोर्स में आप डिस्कवरी नहीं करते, आपको इंडिकेशन होती है उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप जब वापस जाएंगे तो आपको उसको जो आपने महसूस किया है उसको कंटिन्यू रखें बांटिए और लोगों में। यही मेरी आपके साथ विशेज है एंड ऑल माय बेस्ट विशेज फॉर द कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन नीरू जी का। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप जिनके माध्यम से यहाँ आए हैं, भ्राता पीयूष जी जो हमारे सीयू विंग के काफी पुराने सीनियर मेंबर और बहुत ही अच्छे स्पीकर है, आगे उनको सुनने का आपको चांस मिलेगा, उनका भी मैं थैंक्स करती हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग शिक्षा देते हैं बहुत कम लोग शिक्षा को अमल में लाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो शिक्षा का स्वरूप स्वयं ही बन जाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ऐसी एक प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मुंबई मुलुंड सब जोन की संचालिका एवं हमारे सीयू विंग की महाराष्ट्र जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय गोदावरी दीदी जी, हम उनके भी शुभ आशीष जरूर सुनेंगे।
ओम शांति। आज तो खुशियों का कोई पार नहीं है, हमारे बीच में हमारी आदरणीय प्राण प्यारी दादियां जब पधारी तो जैसे आत्माओं का सोलह श्रृंगार हो गया। और आज ये साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कि जीवन की पुनः खोज, तो सचमुच इतने अनुभव युक्त प्रेरणा युक्त विचार सुन सुन करके ही पुनः खोज का मतलब ही है कि हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण सफलता को प्राप्त करना। और जब हमारी दादियां मिली तो जैसे एक परमात्मा की लाइट माइट मिली शक्ति मिली और लगता है कि सचमुच सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही है। तो इतना हमारे मन के अंदर दृढ़ संकल्प, आज ये सभी यहाँ पधारे हुए यही संकल्प करें कि जीवन के अंदर चाहे हम भौतिकवाद में कितने भी हो कितना भी हमारे पास भौतिक संपत्ति इत्यादि हो, लेकिन जब तक हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता नहीं आई है, परमात्म शक्तियां नहीं आई है, तब तक हम संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा कहना आप सभी को बार बार यही है कि ईश्वरीय शक्ति को आप हासिल करें। हमको भी याद आता है 50 वर्ष पूर्व हमें भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ वाना मिलना हुआ, तो ईश्वरीय शक्ति का एहसास हुआ कि भगवान की शक्ति एक दुनिया में क्या चीज है जो हमें बहुत कुछ जीवन का परिवर्तन करा ही देती है। जब भगवान नहीं मिलता है, शक्तियाँ नहीं मिलती है, उनके गुण नहीं मिलते हैं, तब तक जीवन क्या होती है, और जब भगवान मिलता है, उनकी शक्तियाँ मिलती है, तो जीवन के अंदर जितनी जो बुराइयाँ है, अवगुण है, कई प्रकार के विकार है, वो सभी उन शक्तियों से निकल जाती हैं और मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है और ख्याल आता है कि हर मानव अपना जीवन ऐसा ही उच्च महान बनावे। वर्तमान समय का जीवन को हम देख रहे हैं कि जीवन तो है ही, हर मनुष्य आत्माएं कह रहे हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय जीवन में से जी निकल गया है और वन रह गया है। वन का मतलब भी होता है जंगल, तो जंगल में इंसान जैसे भटक गया है, अपने आप को ही भूल गया है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। तो परमात्मा पिता आकर के हमें सही अर्थ बताते हैं कि जी का मतलब ही होता है कि जी फॉर गॉड और जी फॉर गुड है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जीवन के अंदर गुड ही गुड होता रहेगा। तो इस नए साल के अंदर आप सभी को मुझे ये गुड विशेष देने में बड़ी खुशी हो रही है कि आप आए हुए सभी भाई बहने बस यहाँ से गुड विशेष यही है गॉड की कि आपके जीवन में अभी एक नया दृढ़ संकल्प लेके जाइए कि हमें अपने आप का परिवर्तन करना ही है और सफलता को प्राप्त करना ही है। तो अवश्य है कि एक कदम हमारा तो भगवान की गारंटी है कि हजार कदम मेरा होगा ही, और परमात्मा में यही कहता है कि आप मुझे मेरा ध्यान धरोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि मैं आपका ध्यान रखूंगा ही। तो हमें इतना यकीन होना चाहिए कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, भगवान एक है, सत्य है, शिवम है, सुंदरम है, उनको अपने जीवन में याद करने से ही हमें सर्व शक्तियाँ भरपूर मिलेगी और सफलता भी प्राप्त होगी ही। और जीवन की पुनः खोज माना अंतरात्मा की तरफ मुड़ने से यही खोज मिलेगी कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की शक्ति हूँ, परमात्मा पिता की संतान हूँ। अगर इतना ही याद रहेगा तो जीवन का बेड़ा पार है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। दीदी जी ने एक बहुत अच्छी बात हम सबको कही कि भगवान को हम साथी बनाएं। निश्चित तौर पर मैं एक जगह कोटेशन पढ़ रही थी कि अगर लोहे का काम करके कोई टाटा और जूते का काम करके कोई बाटा बन सकता है, तो भगवान को याद करके हम खुशनुमा क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते कि नहीं? तो भगवान को साथी बनाएं। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी, आपकी उम्र को देखते हुए लेकिन आपके जोश को देखते हुए कि जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तूफानों से टकराते उसे ही इंसान कहते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय भ्राता शंकरलाल तिवारी जी उपस्थित हैं। आप वर्तमान समय सतना विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
सर्वप्रथम आप सबकी ओर से अपनी ओर से परम श्रद्धेय, परम अभिनंदनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय परम पिता परमात्मा ब्रह्मा स्वरूप बाबा के चरणों में सत सत नमन अभिनंदन वंदन करते हुए मंच में विराजमान सभी मेरे आत्मीय, मेरे समक्ष उपस्थित सभी बंधु एवं बहनें, अभी दादी माँ के दर्शन के बाद, उनके वाणी को सुनने के बाद, विद्वानों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ कहने योग्य है, शेष है, पर कार्यक्रम के एजेंडे के मुताबिक मुझे खड़ा किया है। मैं आप सब का अभिनंदन करता हूँ और इस धरती में जो शिव स्वरूप आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं उन सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़चला कोई बांधा गया जंजीर। जीवन हम सबको मिला, जीवन को हमने अपने ढंग से जीने की कोशिश की, पर आज इस अभिनव सेमिनार ने, अभिनव सम्मेलन ने जो पुनर्जीवन की खोज, हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं, हमें जाना कहां है, क्योंकि जाना तो तय है, और जब जाना तय है तो ये भी तय है कि श्मशान तक नहीं जाना है, कहीं न कहीं और भी जाना है जहां से हम आए। उस परम शक्ति परमात्मा पर यदि हम अपना ध्यान जितने दिनों के लिए हम यहां हैं, जितने घंटों के लिए यहां हैं, उतने दिन, और फिर यहां से लौट करके जो आज सुबह का कार्यक्रम हुआ, मैं सोचता हूं वो शब्दों से वर्णन करने लायक मेडिटेशन का कार्यक्रम नहीं। यदि उसे हम अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में हम स्वयं और अन्यान्य लोगों को प्रेरित करके, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छी बात एक वक्ता ने कही, लखनऊ से पधारे हैं हमारे आदरणीय, उन्होंने कही कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो बहुत विद्वान हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनके अलावा जो कम शिक्षित लोग हैं उनमें कोई अंतर है, जो तुझमें है वो मुझमें है की स्थिति है, सिर्फ जो संस्कारी हैं उन संस्कारी बंधु और बहनों से निवेदन है कि हम सब जब यहां एकत्रित हुए हैं इस चमत्कारिक और इस सच में अभिनव सम्मेलन में, यहां से हम जो लेकर के जाएंगे वो हमारे जीवन भर अकेले काम ना आए और लोगों के काम आए, एकात्मता, एकात्मता के साथ साथ हम सब एक ही ईश्वर के, एक ही शिव बाबा के अंश हैं, इस भाव से आम आदमी के लिए भी, सामान्य जन के लिए भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरे जिले में, मेरे क्षेत्र में एकदम भोले भाले गरीब आदिवासी, मुझे मैंने मन में वो आ रहा है, ऐसी बहनें, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी कोई ज्ञान नहीं सीखा, कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, पर उसके बावजूद भी बाबा की कृपा से, सच में वो हम सबके पिता हैं, उनकी कृपा से मेरे जिले में तमाम ऐसी बहनें, तमाम ऐसे बंधु जिन्हें कोई ध्यान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और उन्होंने अपने जीवन में भरपूर परिवर्तन किया। आज मैं यहां उपस्थित हूं, मैं यहां तीसरी बार आया हूं, मैं आपसे सच कहता हूं, शुरू में भी कहा कि आए हैं तो जाएंगे, पर जाने के पहले यदि हम अपने बाप को पहचान लें, अपने पिता को पहचान लें, और हमको उन्होंने यहां क्यों भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा है, यदि उस कार्य का कुछ अंश भी हम कर पाए तो मैं सोचूंगा इस सेमिनार में उपस्थित होने की सार्थकता हम सबको मिली। मैं बहुत विद्वान नहीं हूं, पर विद्वानों के बीच में बैठ करके आप सबको सुन करके एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कई योग बताए, सांख्य योग, कर्म योग, और फिर एक बात अंत में कही, स्थिति प्रज्ञ। अर्जुन ने कहा, भगवान इतने प्रकार के योग आपने मुझे बताए, ये स्थिति प्रज्ञ नई बात कह दी, ये स्थिति प्रज्ञ है क्या, ये कैसा है, क्या करता है? इसको मैं हिंदी में कह रहा हूं, संस्कृत में श्लोक है गीता में, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि स्थित प्रज्ञ सबसे बड़ी समाधि है, सबसे बड़ी योग है। आजकल तो योग को योगा, अभी दीदी जी ने बताया था, विदेश के लोग कहने लगे हैं। पर जब कृष्ण ने अर्जुन से तमाम योग बताने के बाद स्थित प्रज्ञ की चर्चा की, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, हे कृष्ण, ये स्थित प्रज्ञ क्या है? हिंदी में है, स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है किसे, स्थित ही बोलता और कैसे डोलता। ये क्या है स्थित प्रज्ञ, ये स्थित प्रज्ञ जो होता है ये कैसे बोलता है, कैसे डोलता है, क्या करता है, इसके क्या लक्षण है? तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि दुख में न दुख हो, सुख में न सुख हो, पाता आत्म प्रसाद सो, हम दुख में दुखी नहीं हो और सुख में बहुत बेहवल होकर के उसी में डूब न जाए। यदि ये स्थिति कि दुख में दुख नहीं, सुख में सुख नहीं, जो भी समर्पण है, शिव बाबा के प्रति समर्पण है, परम पिता के प्रति समर्पण है, और इस एकात्म मानववाद, एकात्मता का जो यज्ञ है, सबके जागरण का जो यज्ञ है, इसके लिए समर्पण है, तो मैं सोचता हूं यह सबसे बड़ी समाधि है, सबसे बड़ा योग है। आप सबको प्रणाम करते हुए, बार बार आप सबका अभिनंदन करते हुए, आज हम सबको दादी माँ के जो दर्शन हुए वो सच में अद्भुत क्षण थे, जीवन में अविस्मरणीय क्षण थे, उनका हमेशा याद करते रहें। प्रणाम। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता तिवारी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को जिसने जीवन में हमेशा यही प्रेरणा दी है कि जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। जी हाँ, दिल्ली से पधारे हमारे आदरणीय माननीय भ्राता जवाहर मेहता जी। आपने एयरफोर्स में रडार एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में 27 वर्ष सेवा देने के बाद 1990 में विंग कमांडर के पद से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया एवं अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। माननीय भ्राता जवाहर मेहता जी,
ओम शांति। मेरे पूर्व वक्ता तिवारी जी ने जो कहा उसके समर्थन में मैं अपना वक्तव्य दोहराऊंगा कि साधारण से साधारण या कितने भी पढ़े हुए जो भी हम भाई बहने हैं, उनको आध्यात्मिकता, आत्मा, परमात्मा, जीवन का लक्ष्य, ऐसे गहन विषयों के ऊपर विचार करने की प्रेरणा देने एवं उनका मार्गदर्शन करने के लिए मैं इस मंच का माध्यम द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को तहे दिल से मुबारक दे रहा हूं और धन्यवाद भी दे रहा हूं कि ऐसे गुह्य विषयों के ऊपर जनसाधारण को प्रेरित करके और उनके जीवन में सुख शांति लाने की ये एक बहुत बड़ा अभियान है, और उस अभियान में आप सभी यहां पे पधारे हुए भाई बहनों को मैं तहे दिल से मुबारक भी दे रहा हूं, धन्यवाद भी कर रहा हूं, और साथ साथ नम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप जितना भी समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में बिता रहे हैं 3-4 दिन, आप उसका पूरा पूरा उपयोग करें और अपने जीवन की बारे में जो नई खोज की ये सेमिनार है उसका पूरा पूरा फायदा लें और आगे भी अपने जीवन को इससे जुड़े रखने का अनुरोध करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति।
आदरणीय जवाहर मेहता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम की चेयरपर्सन, हमारे सीयू विंग की भी चेयरपर्सन और गुजरात जोन के जोनल डायरेक्टर आदरणीय सरला दीदी जी से हम सभी उनके आशीर्वचन सुनेंगे।
ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं को देख करके कितना हर्ष हो रहा है, चाहे कार्यक्रम पूरा भी हो गया, कहीं जाने वाले चले भी गए, उठने वाले उठ करके भी गए, परंतु आप सभी चात्रक पक्षी के माफक अभी भी आप कितनी शांति से और प्रेम से हम सभी का अनुभव सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। मैं किन शब्दों में आप सभी को धन्यवाद दूं या आप सभी का शुक्रिया अदा करूं? वैसे तो ये भारत भूषण जी को कार्य मिला हुआ है, परंतु दिल से आप आत्माओं पर इतना प्यार बरस रहा है जो आप सभी हमें भी खुश रखने के लिए, चाहे समय को नहीं देखते हो, घड़ी को नहीं देखते हो, परंतु ये सुंदर घड़ी आई हुई है जो आप एक एक वक्ताओं से बहुत कुछ लूटना चाहते हो, लेना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, ऐसा मैं आप सभी आत्माओं को देख करके अनुभव कर रही हूँ। तो बहुत बहुत दिल से आप सभी के ऊपर प्यार की वर्षा हो रही है, स्नेह की वर्षा कहो, ये भी आप सभी का एक विशेष गुण देख रहे हैं कि हरेक को मतलब कैसे खुश रखे। तो बहुत बहुत ऐसी भी आज की जो सभा हमने देखी, कई सभाओं में जाने का तो होता है, कईयों से मिलना होता है, परंतु सचमुच में आप वो प्यासी आत्माएं हो, आप वो प्रभु प्रिय आत्माएं हो जो आप हमारे दादियों को भी अति प्रिय लगे हो। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा, फील किया होगा कि आज की सभा को देख करके हमारी दोनों दादियों ने यही कहा कि ये तो वही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, ये तो कौन सी सभा है। तो आप सभी को उन्होंने भी पहचान लिया कि कौन इसके योग्य है या अयोग्य है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, परंतु आप अधिकारी आत्माएं यहाँ पर आकर के पहुंचे हो, तो ये देख करके उन्हें भी आभास हो गया हमें भी यही फीलिंग आप सभी से आ रही है, तो कितना अंदर से आप सभी के लिए क्या सुनाए, कितना सुनाए, सुनते रहो, परंतु समय भी देखना पड़ता है। सारे जीवन की बातें हैं, पूरी लाइफ की बातें आपको अगर सुनाने बैठे 14 साल की उम्र से लेकर के, आप तो 2 दिन से यहाँ आए हो, परंतु हम तो बचपन से ही इस संस्था में कैसे जुड़ गए, पूरा परिवार इसमें कैसे आ गया, हमारी ग्रैंड मदर कैसे मुंबई जैसी मायावी नगरी में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी, जहाँ कोई भी ब्रह्मा कुमारियों का नाम तक भी नहीं सुना था, परंतु इन देवियों को, दादियों को, सभी को देख करके हमें भी ऐसी प्रेरणा मिली और हमने ही बाल्यकाल में ऐसा सुंदर जीवन बनाने का निर्णय ले लिया और निश्चय कर लिया। हमारे माता पिता ने भी हमें पूरा साथ दिया, सहयोग दिया और हमारे मन की आशाएं उन्होंने पूर्ण की, क्योंकि हमने कहा कि हमको ऐसा सुंदर जीवन बनाना है, जो कहते तो है सत्यम शिवम सुंदरम, तो ऐसा सुंदर जीवन हम भी क्यों न अपना व्यतीत करें। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, तो अब नहीं खोना है, जबकि इतना पा लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, जब रियलाइजेशन हो गया है, जब रियल आई मिल गई है, तीसरी आंख मिल गई है, व्हाट एम आई को पहचानने की आय मिल गई है, नेत्र तीसरा मिल गया है, तो अभी हम कैसे उनको भूलेंगे या छोड़ेंगे। तो छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, परंतु पढ़ाई का लक्ष्य भी फिर वो न रहा जो पहले पढ़ने का लक्ष्य था, परंतु इसी पढ़ाई में लग गए। और जीवन हो तो ऐसा, कुछ जीवन में हमारा गोल होना चाहिए, कुछ मुझे बनना है, कुछ मुझे करना है, तो पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, मुझे बनना होगा। तो इन दादियों को देख करके हमें भी ऐसा, हम भी अपना जीवन बनाए, और जो परमात्मा को प्रिय है वही कार्य मुझे करना है, प्रभु पसंद बनना है, प्रभु को जो पसंद है, तो मैं भी क्यों नहीं अपना ऐसा सुंदर जीवन बनाए। तो मैं तो यही, जब सभी वक्ताएं बोल रहे थे तो मैं तो यही सोच रही थी, कहा जाता है काजी जी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र, और हम तो गांव की फिक्र नहीं, सारे विश्व की फिक्र करते हुए दुबले नहीं है, दुगुने हैं, भगवान ने मोटा बना दिया है। जो आज कितनी भी बातें संसार में रहते हुए आती है, चाहे सामना करना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, कभी झुकना पड़े, कई बातें आती है, परंतु फेस करते हुए भी ये फेस बड़ा अच्छा रखना है, हमारा फेस बड़ा अच्छा हो, चाहे कितना फेस लाइफ में करना पड़े, सहन करना पड़े, परंतु मैं वो मूर्ति हूँ, मैं वो देवी हूँ, मैं वो साक्षात लक्ष्मी हूँ, मुझे अपने चेहरे से हरेक को दिव्य गुणों का भी साक्षात्कार कराना है, मेरे सुंदर जीवन का भी साक्षात्कार कराना है, ऐसा मुझे साक्षात बनकर के रहना है। कभी मन उलझन में न रहे, मन सदा मौज में रहे, मुझे हुआ भी न रहे, हम हमेशा अपने मन को सदा प्रसन्न रहे, सदा खुश रहे, एवर हैप्पी रहे, सदा हंसते रहे, कोई पूछे आपको क्या मिला है, कोई हमारे को देख करके, हमारे चेहरे को देख करके ये न हुए, ये पूछे नहीं कि आपको क्या हुआ है, क्या हुआ कुछ नहीं है, पर क्या मिला है, इतना प्रश्न जरूर पूछे, ताकि हम उनको सुना सके कि हमें जीवन में जो कुछ चाहना थी, जो पाना था, जो मिलना था, हमें हमारा जीवन साथी मिल गया, उसका संग मिल गया, उसका पक्का रंग चढ़ गया। जैसे मीरा गाती थी, यहाँ आप देख रहे हो कितनी सच्ची मीरा हैं, जिन्होंने अपना जीवन वन नंबर का बना लिया A1, तो ऐसे परमात्मा को सत सत प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, जिसने हमें पसंद कर लिया और इतना सुंदर राह दिखा के मन की चाहनाओं को पूर्ण कर दिया है, तो अधिक समय न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप भी बहुत इसका पूरा लाभ लेंगे और अनुभव करेंगे जीवन में, अनुभव, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ही आत्मा, मैं सरला हूँ, सरला हूँ मैं नहीं कहती हूँ, मैं हूँ ही सरला। तो आप भी आज से चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे और उसी परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे, आपके अंदर वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिन शक्तियों को प्राप्त करके मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके आप विजयी आत्माएं बन सकते हो, विजय माला के मण के, प्रभु के गले के हार बन सकते हो। ऐसी मंगल कामना, शुभ भावना आप सभी के लिए मैं भी करती हूँ, ऐसी आशा। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जी ने एक बात कही कि सदा खुश रहना है, चेहरा हमारा खुशी में सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भारत भूषण भाई को। आप हमारी इस विंग के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं और आप अपने जोन के, इस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ।
ओम शांति। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इसके पीछे बैक पे उनका बड़ा सुंदर फोटो है, जिन्होंने देखा होगा डायमंड हॉल, तो कैसे वो गुप्त शक्तियां इन सबको तैयार करने वाली, उनकी हम सब रचना है, वो सारा प्लानिंग उन्हीं से ही हमें मिल रहा है। ये विंग वाइज प्रोग्राम करो, ऐसा करो, ऐसा सब बाबा के इशारे अनुसार ही सब कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनका तह दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने प्यारे बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, जो इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देके हम सबको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा सौभाग्य हमारी विंग का और आप सबके योग का। कई बार ऐसे टाइम आए हैं, ये हाल खचाखच 30,000 लोग भरे होते हैं, तड़फ होती है, दादियां हमारे बीच में आए, निर्वैर भाई बीच में आए, लेकिन इंटरनेशनल संस्था है, उसका कार्यभार होने के कारण, कभी स्वास्थ्य के कारण वो चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाते। सबकी इच्छा होती है कि 2 मिनट के लिए तो आए। आज ही हमारी विंग का सौभाग्य है, तीनों दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी और हमारे निर्वैर भाई, तीनों ही हमारे बीच में इस विंग में। इट इज रियली वी आर हाईली फॉर्चुनेट। इस तरीके से उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि समय निकाल के हम सबके बीच में पहुंचे। आपने देखा कैसे एकदम एटमोस्फेयर चार्ज हो गया उनके आते ही, और सब उनके सामने, चाहे कोई जीएम हो चाहे कोई ईडी हो, सब बच्चे बन जाते हैं, बाबा आ गया, बाबा आ गया, कैसे दादी खुशी में सबको नचा दिया। फिर मैं धन्यवाद करता हूं हम सबके बीच में मिस नीरू अब्रॉल बैठी हैं, जिनका बहनों से बहुत स्नेह है, जैसे बताया हमारे पास पानीपत में भी आती हैं, तब अक्सर मिलते रहते हैं बहनें, और वो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, और साथ में उन्होंने शोभा बढ़ाई हमारे इस कार्यक्रम की, भ्राता शंकर लाल तिवारी। देखो उनकी सूरत से ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। 3-4 मिनट मेरे से जो उनसे वाइब्रेशन मिला, जो शेयर किया बैठे बैठे उन्होंने, मुझे लगा सचमुच ये बहुत तपस्वी एमएलए हैं, राजनीतिक में हैं लेकिन तपस्वी भी हैं, और उन्होंने भी इस विंग की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ भ्राता राकेश मित्तल जी जो आईएएस हैं, बड़ा सुंदर की नोट स्पीच किया, 16 पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखी हैं, बड़े अच्छे राइटर भी हैं। तो तीनों के लिए, हमारे जो तीनों गेस्ट, उन सब के लिए जोरदार तालियों से हम अभिनंदन। अब हमारी गाइडिंग लाइट्स सरला दीदी जी, प्रेरणा के स्रोत, और भ्राता मोहन सिंगल जी, दो दिन रात बढ़े चलो, आगे चलो और बढ़ो, सबको साथ टीम को लेके कितने उत्साह से पूरे, मैं समझता हूं 3-4 महीने से इस कॉन्फ्रेंस के लिए जितना उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो हमारी सरला दीदी और मोहन भ्राता जी के लिए जितनी तालियां बजाएं उतना कम है, रियली वो गाइडिंग लाइट्स हैं इस हमारी पूरी विंग के लिए। बहन माधुरी जी कहते हैं बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको जैसा नाम हो वैसा ही काम हो, लग रहा था ना माधुरी बहन बोल रही है, मधुर पुष्प लगातार झड़ ही रहे हैं। तो माधुरी बहन ने कितना सुंदर मधुरता पूर्वक मन संचालन किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज्यादा किसका, आप सभी का, आप सभी का जो इतना दूर दूर से आए हैं, और हमारे गाइड्स भाई सब तरफ से, और कितने पेशेंस से आप बैठे हुए हैं, बहुत ही स्नेह पूर्वक सुनने के लिए। तो सभी डेलीगेट्स के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। बीच में से आप गए नहीं, मैं जो बैठे हैं पॉजिटिव देखते हैं कितना उनका पेशेंस है, क्योंकि एक महा लाइफ रीडिस्कवरिंग पे है ना सारा प्रोग्राम, तो उसके लिए केवल दो शब्द कहते हुए, एक महात्मा जी थे बड़े सिद्ध पुरुष थे, एक जिज्ञासु गया, उसको पता था इनके सामने बैठते ही बड़े सुंदर अनुभव होते हैं, तो वो गया, मुझे भी महात्मा जी अनुभव कराए, कि जरूर कराएंगे बैठो। अभी बैठा ही था बड़ी तेज से एक डिजास्टर आया, साइक्लोन आया, इतना तेज तूफान आया, छतें हिलने लग गई, टीन की थी, तो वो फटाफट भाग गया, वो तो भाग गया बहुत दूर। उसने कहा महात्मा जी आप भी भागो भागो बचाना है। महात्मा जी अंतर ध्यान हो गए, आधे घंटे बाद जब तूफान रुक गया फिर वो आया सेफ स्थान पे, जहां महात्मा जी आप बैठे रहे, आपको डर नहीं लगा, आप बैठे रहे मगन होके। कहते नहीं, देखो जब तूफान आया तुम भी भागे हम भी भागे, तुम बाहर भागे हम अंदर भागे, बस फर्क इतना था। इसलिए आप जो बैठे हुए हैं पेशेंस से सुन रहे हैं, आप अंदर की ओर भागे कितना अच्छा है, इसलिए आपके लिए तालियां बजवा रहे हैं। जैसा जो देखे लाइफ रीड डिस्कवरिंग पे, जिन्होंने डिस्कवर किया, किसी ने कहा व्हाट इज लाइफ, लाइफ लाइफ इज ए स्ट्रगल फाइट इट, व्हाट इज लाइफ, लाइफ लाइफ इज ए ट्रेजडी फेस इट, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ए सारो ओवरकम इट, ये थे जिन्होंने नेगेटिव देखा। और जिन्होंने पॉजिटिव देखा, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ए गेम प्ले इट, लाइफ इज ए सॉन्ग सिंग इट, लाइफ इज ए गिफ्ट एक्सेप्ट इट। और किसी आध्यात्मिक से पूछा व्हाट इज द लाइफ, लाइफ इज ए स्पिरिट रियलाइज इट, जैसा देखा वैसा ही पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक अंतिम शेर से पूरा करूंगा, जो जैसा देखा वैसा पाया पे खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण भाई का, सभी का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भूषण भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अब इतनी देर हमने धैर्य रखा ही है तो एक मिनट के लिए और थोड़ा सा धैर्य रखें, और अंतिम हम उस परमात्मा पिता को जरूर धन्यवाद दें। तो एक मिनट के लिए हम सभी शिव पिता की याद में बैठेंगे, उसके बाद हम हॉल के राइट साइड में चलेंगे। आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारे बैलून्स बंधे हुए हैं उड़ने के लिए तैयार। हम सभी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, लाइफ को रीडिस्कवर करने आए, तो हम सब अपने बचपन में चलेंगे कुछ पल के लिए और इन गुब्बारों के साथ उस बचपन को जिएंगे, इन गुब्बारों को अपनी खुशियों के साथ उड़ाएंगे। एक मिनट के लिए सभी बैठेंगे और फिर सभी चलेंगे बैलून सेरेमनी।
सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो,
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो,
सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। चलो सबके दिल में प्रभु प्यार।